it is received.
Medical Wing of Ramakumaris presents a 3-day mind-body medicine e-conference. Spiritual Dimensions in Healthcare, the time is now.
Namaskar, swagat hai aap sabhi ka mind-body medicine conference mein. Aaj ka din bada hi shubh din hai. Aur ise bada din bhi kaha jata hai. Pure vishw bhar mein Christmas manaya ja raha hai aaj. Ye yaad dilata hai ki hum bhale hi kitni hi gehri raaton se kyun na guzrein. Kahin na kahin raat thamti zarur hai. दिन का उजाला फिर बड़ा होना शुरू होता है और इसीलिए बड़ा दिन यानी क्रिसमस भी हम मनाते हैं। इस अच्छे दिन पर आज हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन में हम अपने अंतर की ओर यात्रा करने वाले हैं। डॉक्टर्स या मेडिकल कर्मी हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और ये जो वर्ष गया है इस वर्ष में तो हमें पता चला है कि हमारे जीवन के सही हीरोज कौन हैं, कौन वो लोग हैं जिन्हें हमें सही में सैल्यूट करने की, कौन वो लोग हैं जिनकी तरफ हमें नजरें उठाकर देखने की आवश्यकता है। वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हैं। अपने जीवन के बारे में ध्यान न देकर, अपने ऊपर अटेंशन न देकर भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हमेशा पेशेंट्स के और मरीजों का ख्याल रखने के बारे में सोचते हैं और शायद इसी सफर में वो इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और इसके बदौलत बहुत बार फटीग, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसी ही अनेक समस्याएं उनको घेर लेती हैं। तो हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए एक विशेष मौका माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के रूप में ले आए हैं ताकि इस साल के अंत में हम कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर परिवर्तन ले आए ताकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों की सेवा में जुटा सकें। हम दूसरों का तो ख्याल रखें मगर उसकी शुरुआत हम अपने आप का ख्याल करने से करें। आइए माइंड बॉडी मेडिसिन के इस उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माइंड बॉडी मेडिसिन के इस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करने के लिए, आप सभी का अभिवादन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी को, जो आप सभी का स्वागत करेंगे शब्दों से। डॉक्टर बनारसी लाल शाह सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के, जिसके तत्वाधान में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और साथ साथ वो निदेशक हैं एवरेली हॉस्पिटल शांतिवन के। आइए उनसे सुनते हैं स्वागत भाषण।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू से हम आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो आज के मुख्य मेहमान डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, साथ ही साथ श्रीपत नायक जी जो आयुष मंत्री हैं और हमारे संस्था के चीफ परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी और ज्वाइंट चीफ दादी रतन मोहिनी जी एंड सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज निर्वैर जी, डॉक्टर अशोक मेहता जो मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर प्रताप मिढा जो मेडिकल विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ हमारी परम आदरणीय शिवानी बहन जी, हम सबका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ये 41 माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, ऐसे तो हम माउंट आबू में अपने ज्ञान सरोवर एकेडमी में करते थे लेकिन लॉकडाउन के कारण, COVID-19 के कारण हम ये कॉन्फ्रेंस ई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमारा प्रयास रहेगा, माउंट आबू तो हमारे पास लिमिटेड स्थान होने के कारण 1200 हम डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स को बुलाते थे लेकिन सीनियर डॉक्टर इतना रुचि से कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे कि कोई भी सेशन में बाहर नहीं जाता था। मेरा अनुभव है कि हम डॉक्टर्स को चाय पीने की आदत होती है तो हम दो सेशन के बीच में चाय रखते थे कॉरिडोर में, अनाउंसमेंट करते थे, फिर भी कोई चाय पीने नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा सेशन मिस न हो जाए, हमारी लेक्चर मिस न हो जाए। तो इतना अच्छा लाइव कॉन्फ्रेंस हमारी ज्ञान सरोवर में होता है, उस कॉन्फ्रेंस को सेम स्पीकर सेम टॉपिक, हम उस कॉन्फ्रेंस को इस बार इतना प्रयास किया है, पूरे भारत ही क्यों कहें, पूरे विश्व में, हालांकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमने लिंक भारत के कोने कोने में सब हॉस्पिटलों में, हम जितने स्टेट हैं उनके हेल्थ मिनिस्टर और आईएमए के प्रेसिडेंट और भिन्न भिन्न वर्ग के, जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं तो उनका एसोसिएशन अलग होता है, साइकेट्रिक डॉक्टर के एसोसिएशन अलग होता है, गायनक का अलग एसोसिएशन होता है, तो उनके प्रेसिडेंट के द्वारा, इवन डिस्ट्रिक्ट में चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा, हम गांव तक लिंक भिजवाने का प्रयास किया है। तो मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 15-20 लाख डॉक्टर्स और डॉक्टर मेडिकल से रिलेटेड लोग भाग लेंगे। तो ये बहुत बड़ा मेगा कॉन्फ्रेंस कहें या कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कहें, तो ये हमारे इतिहास में, ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में इतने गैदरिंग हो, इतने डॉक्टर्स इस कॉन्फ्रेंस में भाग लें, ये पहली बार हो रहा है। तो इसके लिए हम जो हमारे वक्ता हैं उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं और हम सभी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे टाइम पर हमने रखा है कि कोई ये न कह सकता है कि हमारे को ड्यूटी आवर है या हम बहुत बिजी हैं। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8, 25 से 27 हमारी आज से ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, 27 को पूरा होगा, 28 से हम राजयोग शिविर स्टार्ट कर रहे हैं। शिविर भी कराने वाली हमारी आदरणीय उषा बहन है, इतनी अच्छी शिविर कराती है कि सबको बहुत अच्छा लगता है। आज तक के हमारे कॉन्फ्रेंस के रिपोर्ट यही रही है। तो वो भी शिविर का टाइम है शाम को 6 से 7:30, डेढ़ घंटा लाइव शिविर 4 दिन वो कराएंगे। तो हमारी सबसे निवेदन यही रहेगी कि आप जहां हो वहां इस कॉन्फ्रेंस को जरूर अटेंड करें और शिविर को भी अटेंड करें। दूसरी बात, हम क्यों इतना प्रयास किया, क्यों भारत के कोने कोने तक पहुंचे हैं, क्यों विदेश में भेजा, इसलिए भेजा कि कोविड-19 के कारण डॉक्टर हमारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारी नर्सेज बहनें रात दिन जान को जोखिम में लेकर के दिल से मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेहनत करते करते थोड़ा अंदर में उनको भय, अंदर में एक उदासी, अंदर में एक थकावट कहें, एक उनके चेहरे से दिखाई देता है। उनको फ्रेश करने के लिए जो कोविड-19 के कारण, ड्यूटी के कारण जो हमारे स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, जो भी स्टाफ थके हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, शिविर को अटेंड करेंगे, तो उनके जीवन में नई जागृति आ जाएगी और नई एक उमंग उत्साह आ जाएगा और फिर नई उमंग उत्साह से अपनी ड्यूटी करेंगे, कोविड-19 के पेशेंट को दिल से सेवा करेंगे। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम इतना, पूरे भारत और पूरे विश्व में इस कॉन्फ्रेंस को हमने सब जगह प्रयास किया है कि सभी जगह सबको इस कॉन्फ्रेंस से लाभ मिले। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस हम पहली बार, ये सब परमात्मा की प्रेरणा है, हमारी क्या सोच हो सकती है। तो परमात्मा की प्रेरणा के कारण ये हो रहा है, तो मुझे विश्वास है कि सभी लोग अच्छी तरह से लाभ लेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे और उनके जीवन में एक नई सुनहरी गोल्डन एक किरण उनके जीवन में आएगी और उमंग उत्साह से पेशेंट की, क्या सारे भारत के जो भी बीमार हैं, पेशेंट हैं, उन सबकी सेवा दिल से करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस का हमारा यही ये रहेगा। इसलिए हम जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम सबको दिल से उनको बड़े दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दिल तो करता है कि अरे इतने दिल से सेवा करने वालों को गले मिलना चाहिए, लेकिन समय के अभाव, सरकार के रिस्ट्रिक्शन और दूरियां, कहां भारत के कोने कोने में पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो हम दिल से आप सबको परमात्मा के घर ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप लोग ऐसे समझिए कि हम माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में यूनिवर्सल पीस हॉल में ही बैठ करके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। तो फिर से आप सबका हम हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनारसी जी का, और मैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर बनारसी जी का भी स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में आत्मीयता के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप सभी का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनारसी जी का। इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मैं इस मेडिकल विंग के बारे में, जिसके तत्वाधान में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में और उनकी सेवाओं के बारे में जानने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी को। डॉक्टर प्रताप मिड्ढा वाइस प्रेसिडेंट हैं राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के, और पिछले 30 वर्षों से मेडिकल विंग जो सेवाएं दे रहा है उसके बारे में वो प्रकाश डालेंगे। साथ साथ डॉक्टर प्रताप निदेशक हैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के और ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्ट राजस्थान और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 7 से अधिक हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का निर्वहन करता है। आइए डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी से सुनते हैं ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग की सेवाओं के बारे में, और 30 वर्षों में जो विस्तार हुआ है मेडिकल कम्युनिटी की सेवाओं के लिए, क्या क्या ब्रह्मा कुमारीज का योगदान रहा है। डॉक्टर मिड्ढा।
ओम शांति। ये जो कॉन्फ्रेंस में आप सभी सम्मिलित हो रहे मेरे डॉक्टर बंधुओं, आत्मिक बहनों और भाइयों, हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस दैट वी आर कनेक्टिंग विद यू थ्रू द साइंटिफिक मोड, एंड ऑल्दो हम वी आर एट अ डिस्टेंस बट वी आर वेरी क्लोज। ये समीपता हमारे विचारों में है। आज हम सभी समझते हैं कि चिकित्सक वर्ग, द हेल्थ प्रोफेशनल्स हैव डन वंडर्स, दे हैव डन टोटली रेवोल्यूशनरी थिंग्स। अपने जीवन को रिस्क पर डालते हुए भी मानवता की सेवा की है। कोरोना वायरस में हमने ये देखा कि लोगों को न केवल प्रिवेंटिव में ये इसकी जरूरत थी, लेकिन जो कुछ लोग अफेक्ट हो गए थे उनको भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत रहे हम प्रेशर में थे, हम स्ट्रेस में थे, तो भी हमने मानवता के लिए एक अद्भुत चमत्कार किया। आप देखें भारत में मॉर्टेलिटी कितनी कम रही है, उसके लिए हम यूं कहेंगे कि न केवल डॉक्टर्स की साइंटिफिक कैपेसिटी थी, लेकिन डॉक्टर्स की मेंटल एंड्योरेंस भी थी, मानसिक शक्ति भी थी। तो इस माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम आप सभी तक पहुंच रहे हैं केवल इस संदेश से कि आज जरूरत ये है कि हम समझें कि मन और तन का क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के द्वारा हम अनेक माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, हॉलिस्टिक हेल्थ फेयर भी कर चुके हैं, लोगों तक एक यही संदेश पहुंचाने के लिए कि हमें अपने हेल्थ की संभाल खुद करनी है। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास हम तब पहुंचते हैं जब अपनी हेल्थ को खो बैठे होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम रोगी होते हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य, हेल्दी होना या निरोगी होना, वो हमारे अपने लिए ये समझ की जरूरत है। अगर हम समझे तो जो आज हम देखते हैं केवल 10% ऑफ जो हेल्थ है वो हॉस्पिटल केयर में है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी जरूरत नहीं है, इमरजेंसी में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं तो डॉक्टर्स के स्किल्स और हेल्थ में जो हॉस्पिटल्स में जो एडवांसेस आए हैं वो भी हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आज क्या हो रहा है वो हमारे जीवन जीने के तरीके से संबंध रखती है, जिसको हम कहें लाइफस्टाइल है, द वे वी लिव आवर लाइव्स, दैट इज बिकमिंग एज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इलनेसेस। आज देखें डिप्रेशन है, सुसाइड है, सब्सटेंस अब्यूज है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती लोगों को, और एक्सीडेंट्स हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? बिकॉज व्यक्ति कोप अप नहीं कर पा रहा है सिचुएशन से, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है। तो इसलिए उसके लिए हमें कुछ और सोचने के लिए तरीके की जरूरत है। फिजिकल हेल्थ के लिए भी हम समझते हैं कि जहां यूं कहें हेल्दी न्यूट्रिशन तो जरूरी है, पर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जरूरी नहीं है, इसेंशियल है। आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है पर लाइपोसक्शन जरूरी नहीं है। ऐसे ही हमें सोशल सपोर्ट चाहिए, हमें अपने आप को मानसिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, ना कि नींद की दवाई खाने की जरूरत है। यदि हम सोचें तो हम ये देखें कि जरूरी क्या है। जरूरी फिजिकल एक्टिविटी है, जरूरी अच्छी नींद है, जरूरी अच्छा व्यवहार है, जिसको हम आचार, आहार और व्यवहार कहते हैं। व्यवहार से ही तो सबसे अधिक तनाव होता है। तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने जो हमारे साथ लोग हमारे पास आते हैं, जो रोगी नहीं भी होते हैं, जो स्वस्थ भी होते हैं, उन तक भी ये संदेश पहुंचाएं कि मन और तन का गहरा संबंध है। यदि आप खुश हैं, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप संतुलित हैं, स्टेबल हैं, एकाग्र हैं, तो आप बहुत सी चीजों को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन यदि आप उदास हैं, यदि आप निराशा में हैं, तो क्या होगा? आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसको हम ये कहें कि डॉक्टर्स हील थाइसेल्फ। क्योंकि जब तक हम एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे हेल्दी लिविंग के लिए, तब तक वो संदेश हम कैसे दे सकते हैं? तो हम लोग ये समझते हैं कि आज जरूरत है होलिस्टिक हेल्थ की, संपूर्ण स्वास्थ्य की, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये परिदर्शित किया कि हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, बट इट इज कंप्लीट वेलबींग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड वी कैन एड स्पिरिचुअल डायमेंशन टू इट। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम हेल्थ को इंटेग्रेटेड हेल्थ कैसे बनाएं, इंटेग्रेटेड हेल्थ का मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो जहां हम शरीर की नरिशमेंट का ध्यान रखते हैं, वैसे ही मन को भी संभालने की जरूरत है। मन को भी नरिशमेंट चाहिए, और मन को नरिशमेंट मिलती है पॉजिटिव थिंकिंग से, मन को नरिशमेंट मिलती है एलिवेटेड थिंकिंग से, मन को नरिशमेंट मिलती है जब हम मन को ट्रेन करते हैं, मन को सुमन बनाते हैं, मन को अपना मित्र बनाते हैं। तो ये तो हम समझते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों में ट्रांसलेट होते हैं। यदि हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, प्योर होंगे, पावरफुल होंगे, तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे, हमारे शब्द भी वैसे ही शक्तिशाली होंगे। तो आज आवश्यकता है इस बात को समझें कि जहां शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं, जिसे हम साइकोसोमेटिक कह देते हैं, मन का भी बहुत प्रभाव रहता है। आजकल तो हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की भी बात करते हैं। तो मन जो है कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचें, हम स्वस्थ रहें, हम सशक्त रहें, तो जरूरी है कि हमें मन को भी सशक्त बनाना होगा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये समझता है कि एक ऐसा समय था जब हमारी लंबी आयु थी, हमारी निरोगी काया थी, और उसके पीछे किस बात का महत्व था? उसके पीछे महत्व था क्लेनलीनेस का, उसके पीछे महत्व था पवित्रता का। पवित्रता यूं कहें अशुद्ध विचारों का त्याग, अशुद्ध अन्न का त्याग, अशुद्ध लाइफस्टाइल का त्याग। तो जब हम इन बातों पर एम्फेसाइज करते हैं, तभी हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ बन सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मेन मैसेज लोगों तक वो है जिसे हम साधना कहें, मेडिटेशन कहें या राजयोग कहें। राजयोग में हम अपने आप को पहचानते हैं और फिर अपने आप को उस रिसोर्स से कनेक्ट कर पाते हैं जिस रिसोर्स को हम सुप्रीम सोल कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा के संग में, परमात्मा की याद में हम अपने आप को वेल बीइंग की तरफ लेके जाते हैं, इल बीइंग की तरफ से। तो हम इस ये संदेश आप सभी तक देना चाहते हैं कि आज जरूरत है मन को राजयोग की और शरीर को जीवन पद्धति की, राइट लाइफस्टाइल की जरूरत है। तो अगर हम राइट लाइफस्टाइल को करें, आज न्यूज बनती है जब बड़ी बड़ी मेडिकल ब्रेक थ्रू होती हैं, लंग कैंसर की कोई नई मैनेजमेंट की टेक्निक निकलेगी तो वो न्यूज बन जाती है। लेकिन जरूरत तो ये है कि हम लोगों तक ये संदेश बनाएं कि वो अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करें, टोबैको को छोड़ें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो सिंपल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ। तो सिंपल थिंग्स लाइक साधना, राजयोग या हम अच्छा अपना लाइफस्टाइल बनाएं, तो उससे हम अपने आप को भी स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी की भी थिंकिंग में परिवर्तन आए, उनके भी विचारधारा में परिवर्तन आए। दवा नहीं लेकिन दुआ भी जरूरी है, केवल टेक्नोलॉजी नहीं लेकिन साइलेंस की भी जरूरत है। तो जब टेक्नोलॉजी और साइलेंस दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम लोगों तक वो निरोगी काया का मैसेज पहुंचा सकते हैं। ऐसा समय आ सकता है कि जब हम लोगों को केवल एजुकेट करें, लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में समझाएं, लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात बताएं, तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और उनके डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की विजिट भी कम हो जाएगी। आज चिकित्सा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि व्यक्ति जब भी हमारे पास आता है तो वो होल पर्सन की तरह आता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और ग्लोबल हॉस्पिटल में हमने इस बात को समझा और जाना। खास तौर पे कुछ ऐसे रोग हैं जिनका हमारे मन के भावों से, हमारे इमोशन से बहुत गहरा कनेक्शन रहता है, जैसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन का प्रोग्राम चलाया। हालांकि हम ये समझते हैं कि ये डिजीज फिजिकल है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेते हैं, स्टेटिन्स देते हैं और लोगों को एंजियोप्लास्टी और बायपास सर्जरी की भी एडवाइस करते हैं। लेकिन एक ये बड़ा चैलेंज लिया कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तन करके, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके, अपने भोजन को परिवर्तन करके हम आर्टरी की ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लॉकेजेस का रिग्रेशन हो सकता है। तो मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस से ये परिवर्तन आया। अब उससे न केवल ये तो केवल एक अंतर था, लेकिन लोगों के लाइफस्टाइल में परिवर्तन आने से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें परिवर्तन आ गया। और ये भी देखा गया कि जितना उन्होंने प्रोग्राम को एडहेयर किया उतना ही उनके परिवर्तन में आया। ऐसे ही जितने भी क्रॉनिक इलनेसेस है, चाहे डायबिटीज है, चाहे आर्थराइटिस है, अस्थमा है, यदि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको उस बीमारी को डीमिस्टिफाई करके ज्ञान देते हैं, तो लोग उस तरह से बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। एक बार ये भी देखा गया था कि जैसे बच्चे हैं उनको अस्थमा के बारे में एजुकेट किया गया, उनको अस्थमा के बारे में ये बताया गया कि रूट कॉजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये देखा गया कि उनके इमरजेंसी रूम एडमिशंस कम हो गए। तो ये जरूरी है कि लोगों को मेडिकल एजुकेशन को डीमिस्टिफाई करने तक पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे ही चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग अब्यूज है, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि लोगों को स्टेबलाइज किया जाए, सशक्त किया जाए उनके प्रति। अब यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आने वाले भाई बहनों को जब इस बात का मालूम पड़ा कि भाई ये जो नशा है इस नशे में नुकसान है, तो मेजॉरिटी ऑफ दी, हमने एक रिसर्च की थी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को उनको एवर्शन हो गई सब्सटेंस अब्यूज से और वो अपने आप ही छोड़ पाए, उनको किसी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ी, साइकेट्रिक हेल्प की। तो हम ये समझते हैं मेडिटेशन हमारे सामने एक, हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम सपोर्टिव थेरेपी नहीं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी दे सकते हैं। और मेडिटेशन और मेडिसिन को जब कंबाइन किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत रिवार्डिंग होते हैं। हम इस बात को भी समझते हैं कि जब तक हम ये बात एम्फेसाइज नहीं करें, इस बात का महत्व नहीं दें कि हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की, अपने मन के विचारों को एक नई दिशा देने की, तो तब तक ये परिवर्तन नहीं आ सकता। वैल्यूज जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है तो हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एक बात, जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इस तरह से हम सिंपल बातों से, हम सादगी से, हम स्वच्छता से अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएंगे, अपने स्वास्थ्य में भी परिवर्तन लाएंगे और लोगों तक भी ये संदेश पहुंचा पाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप मेढा जी का, जिन्होंने इतने डिटेल में, इतने विस्तार में हमें ब्रह्मा कुमारीज के इस मेडिकल विंग के बारे में परिचय दिया और उनकी सेवाओं के बारे में हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप का। अब हमारे बीच एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक मेहता जी हैं। डॉक्टर अशोक मेहता प्रेसिडेंट हैं राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के, साथ साथ मेडिकल डायरेक्टर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के, और साथ साथ डायरेक्टर हैं BSESMG हॉस्पिटल मुंबई के। बहुत ही जाने माने कैंसर सर्जन हैं। इनके ही निर्देशन में मेडिकल विंग की सेवाओं को आज 4 चांद लगे हैं। पिछले 30 वर्षों के कुशल मार्गदर्शन में मेडिकल विंग अनेकों सेवाएं करते आया है और ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका आप हिस्सा बने हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी हम उनसे सुनेंगे। आखिर क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस का, किस उद्देश्य से हमने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, आइए जानते हैं डॉक्टर अशोक मेहता जी से।
ओम शांति। इट्स माय प्रिविलेज टू प्रेजेंट टू यू एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ई कॉन्फ्रेंस ऑन माइंड बॉडी मेडिसिन 2020। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1936। Brahma Kumaris have 8,500 centers in 140 countries teaching Raj Yoga. Medical Wing is one of the 19 wings of Raj Yoga Education and Research Foundation of Brahma Kumaris. Medical Wing has been holding the Mind-Body Medicine conferences for 35 years to popularize the concepts of lifestyle modification and holistic health. Medical Wing, which started with a small group of doctors, has become a large movement with over 3,000 members. More than 30,000 participants have attended our mind-body medicine conferences over the last 3 decades. Rapid development of technologies and better understanding of the underlying biological mechanisms of the diseases is leading to a large number of doctors to practice as a specialist and super specialists. They become like mechanics repairing a biological machine. We overlook that true holistic healing encompasses more than mere restoration of biological function. But a specialist of modern medicine is inadequately trained to deal with these less intangible issues. Spirituality offers support to the healers to restore low morale and burnouts in healthcare professionals and compassionate care to the healed patients. It is important to practice values to make life purposeful. Mind-body medicine is based on intimate connection of a body and mind. Processes of mind influence health of the body. Body also influences mind. Mind creates thoughts, emotions, feelings, which influence the body. It's an approach to wellness based on practice of Raja Yoga meditation to create powerful, peaceful and positive thoughts. Physical exercises and diet aid to reduce stress and restore physical and psychological health. Aerobic exercises help elevate mood due to secretion of dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins, which are called feel-good neurotransmitters. Our vision is an India in which a value-based, compassionate, holistic health education based on self-care will supplement training of the doctors of modern medicine. Understanding the intimate relationship of mind and the body, we encourage a much-needed change in current purely technology-driven approach of practice of modern medicine. Only when we understand our spiritual identity, that I am not only the body, but I am a conscient point of light, a soul or Atman, then and then only we are able to live according to our high values. The mind becomes full of powerful thoughts and heart full of honesty and truth to serve patients with generosity. Patients appreciate compassion beyond measure, and their blessings make our life worthwhile. It is our goal to promote values such as peace, positivity, compassion, and cooperation by incorporating spirituality. Mission of medical wing is to prevent and treat rising incidence of lifestyle-related diseases due to chronic stress of the modern life by training healthcare professionals in values, self-awareness, and self-care. Non-infectious chronic diseases, acronym NICD, includes hypertension, coronary artery disease, diabetes mellitus, addiction leading to cancers, and depression. NICD are a result of chronic stress leading to elevated cortisol levels, diminished T cells, depressed immunity, elevated triglycerides and cholesterol. NICD are a major challenge and cause of increasing morbidity and mortality in India and the world. We have been using lifestyle modification based on Raja Yoga to treat patients suffering from CAD, diabetes, and expectant mothers to have healthy, happy babies through divine Garbha Sanskar, a three-dimensional antenatal care. This virtual conference is our effort to reach a large number of doctors in current stressful period of COVID pandemic. In normal times, this conference would be held in serene atmosphere of 30-acre scenic hillside academy for better world, also known as Gyan Sarovar in Mount Abu, Rajasthan. I'm sure you will enjoy this conference in your homes or the hospitals. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक मेहता जी का, जिन्होंने बड़े ही विस्तार से हमें बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को किस एम के साथ हमने शुरू किया और सेल्फ केयर के एस्पेक्ट्स को हम समझ ही रहे हैं। और डॉक्टर मेहता के वक्तव्य में भी हमने मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें निस्तार करने में, उनके समस्याओं को सॉल्यूशंस देने में क्या करने की आवश्यकता हो सकती है, वो भी पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहता का। इस उद्घाटन सत्र में भाइयों बहनों, हम बहुत सारे अच्छे विचार सुन रहे हैं। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत किसी अच्छे विचार से होती है। जब हम किसी बड़े पेड़ को देखते हैं तो नींव में एक ऐसा बीज होता है जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही इस कॉन्फ्रेंस के बीज के रूप में, या यूं कहें एक प्रेरणा पुंज के रूप में, ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी हैं। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज हैं, और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश की अनेकों सेवाओं में पिछले कई दशकों से उनकी सेवाएं अविस्मरणीय रही हैं। निर्वैर भाई जी के सरल व्यक्तित्व से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। उनके व्यक्तित्व की ये सरलता उनके ज्ञान की गहराई में छलकती है। आइए हम उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी।
ओम शांति। परम पिता परमात्मा की रूहानी संतानों, विशेष रूप से जन जन की सेवा करने के निमित्त डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरा स्टाफ जिसमें इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और खासकर हमारे जो मेडिकल विंग के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक मेहता, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रताप मिड्डा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल साहा, डॉक्टर गिरीश भाई, डॉक्टर मोहित व अन्य मेडिकल विंग के सभी मेंबर्स, आप सभी को समय के अनुसार ऐसा इनोवेटिव होने का विशेष क्या कहूं विचार आया कि हम ऑनलाइन अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर्स की सेवा कर सकें, तो उसके लिए आप सबको जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स हैं और उनके साथ में जो सहयोगी हैं, स्नेही हैं, सभी को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, स्पेशलिस्ट को और टेक्नीशियंस को, सभी को ये एक नई सेवा के लिए बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, क्योंकि इन दिनों में अधिकतर सुनने में आता है कि डॉक्टर्स थोड़ा कोरोना वायरस के कारण अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, पेशेंट्स का भी ध्यान रखते हैं, कहीं कहीं देखा गया है कि डॉक्टर्स सेवा भावना में आकर के सेवा करते हैं लेकिन उन पर भी कोरोना का असर हो जाता है। ये कैसी बीमारी है, कुछ समझ में आती नहीं है, तो ये खास ऐसे टाइम पर जब सन्मुख कॉन्फ्रेंस करने का चांस नहीं मिलता है। वैसे तो मैं मानता हूं कि वो जो सन्मुख कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे हमारे शांति वन के डायमंड हॉल में होती है या ऊपर ज्ञान सरोवर में होती है या पांडव भवन के ओम शांति भवन के हॉल में होती है, वो कॉन्फ्रेंस का कुछ आनंद ही अलग है। स्पीकर्स सामने होते हैं और बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस वो सामने बैठ करके सुनते हैं और फिर इंटरेक्शन होता है और सारे दिन में कितने सेशन चलते हैं। अब इसमें ऑडियंस इतनी देखने में नहीं आती है, सिर्फ स्पीकर्स को देख सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसको सुन सकते हैं। फिर भी हमारे डॉक्टर बनारसी जी की उमंग को मैं देख रहा हूं, वो एक बार नहीं, मेरे पास कम से कम 3-4 बार आए होंगे कि ये हमारी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और हमारे पास लक्ष्य है 35 लाख डॉक्टर्स जो भारत में, उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो बनारसी भाई को और आप सबको बधाई देता हूं और बाकी ये मेरा सोचना है कि जिस तरह से चारों तरफ रिसर्च होती है और रिसर्च के फलस्वरूप कुछ ना कुछ नवीनता निकलती है, अभी जो इस समय ये बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की या कोविड की, कोविड-19 बोलते हैं उसको, सभी को वो जो भय एक बैठ गया है कोरोना का, और ऐसे ही नहीं बैठा है, रियलिटी है। हमारे इतने वैल्यूएबल भाई बहने कोरोना के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करके चले गए, जिस तरह से आप जानते हैं आज मधुबन में विशेष भोग था हमारे आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी के निमित्त, और पंजाब जोन के भाई बहने सब इधर आए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सब तरफ के, तो सभी याद कर रहे हैं। और आज के उस जो प्रोग्राम हुआ उसमें खास हमारी बहन जो संदेशी जिसने भोग लगाया, तो वो विशेष आकर के सूक्ष्म वतन का जो समाचार सुनाया कि ये ऐसी बीमारी है, भ्राता जी 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो वो अभी ऐसा हो गया है कि उनसे व्यक्तिगत कोई मिल ही नहीं पाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, अदरवाइज नो कॉन्टैक्ट। तो इसी तरह से ये जो बातें होती हैं उसकी भेंट में दूसरी जगह पर उसी का इलाज और ढंग से हुआ है, जिसमें के एक दो को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उसमें और उसमें बड़ा अंतर रहा। और हम कहते हैं कि ये जिस तरह से सहज रीति से सब बातें हो सकती थी, उसी ढंग से अगर सबकी सबका इलाज होता रहे, जिसमें के वो उनके नियर एंड डियर वंस जो हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सके, सामने और बात भी कर सके, देख भी सके, इतनी ज्यादा वो उससे भयभीत हो करके और एकदम नजदीक कोई नहीं आ सकता है, ऐसी ऐसी बातें बड़ी अजीब लगती है। और उसमें फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी उसका जो अंतिम संस्कार होता है, आसपास में कोई जा नहीं सकता, कुछ नहीं। तो ये इन सब बातों के ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए, ये कहां तक राइट है, कहां तक नहीं राइट है, और क्या करना चाहिए। तो मेडिकल विंग के भाई बहनों को जरूर विचार चलता होगा, खासकर हमारे दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स हैं या दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, सबका विचार तो चलता है। कोरोना तो एक बीमारी है, इसके अलावा दूसरी कितनी बीमारियां हैं। तो वैसे तो सभी बीमारियों का कारण हम सब जानते हैं, बाबा के महावाक्यों में आता है कि ये 63 जन्म से जो हम 5 विकारों के वश होकर के और ऐसे कर्म करते रहे, उसकी सजा भोगने के लिए ये सारी बीमारियां आ जाती हैं। साइंस की देन है कि उस बीमारी के ऊपर विजय पाने के लिए इंजेक्शंस हैं और टेबलेट्स हैं और सिरप है, कोई ना कोई ऐसी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आखिर तो आप जानते हैं अगर ये शरीर काम नहीं करेगा तो आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये ज्ञान हमारे पास अगर रहे कि हमारा इतना ही पार्ट है, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, हमको तो अब ये पुराना शरीर छोड़ के नया लेना है, और उसमें भी खासकर समय के अनुसार, ये ऐसा समय चल रहा है जो सत्युग की स्थापना के इस समय उसके लिए जो आवश्यकता है ज्ञान और योग की, उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देना जरूरी है, ताकि हम आप अपने जो पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब कोई रहा हुआ है उसको खत्म कर दें, आत्मा बिल्कुल पावन बन जाए, उज्जवल बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, तो उसको फिर शरीर भी ऐसा नए तत्वों का, पांच तत्व ऐसे होंगे जो सत्व प्रधान होंगे, फिर कोई बीमारी का नाम नहीं रहेगा। हंसी में मैं तो कहता हूं सत्युग के जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिनका बचपन श्री राधे कृष्ण है, उनका जब राज होता है तो वहां पर सभी बहुत स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, धन धान्य संपन्न रहते हैं, और कोई वहां पर, क्योंकि इतनी स्वच्छता है, इतनी हरियाली है, इतना सब पांच तत्व इतने सुख देने वाले हैं, तो वहां उस समय कोई आवश्यकता नहीं है ना डॉक्टर की और ना दवाई की, ना वकील की, ना जज की। लेकिन एक चीज हमारी नर्सिंग के भाई बहने, उनको मैं बधाई देता हूं कि बाबा के महावाक्यों के अनुसार सत्युग में वो बाकी प्रोफेशन नहीं होंगे, लेकिन नर्सिंग का प्रोफेशन तो वहां पर भी रहेगा। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल मैं नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन खासकर नर्सिस का बहुत अच्छा पार्ट वहां है। तो ये बात आप सबको सुनाने के बाद फिर मैं वापस आता हूं कि आप सब सुनने वाले जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या दूसरे भाई बहने हैं, अभी ऐसा पुरुषार्थ करें ईश्वरी याद का और ईश्वरी ज्ञान के महावाक्यों को अच्छी तरह जानकर, उसकी गहराई में जाकर, उसकी धारणा करके अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि आप भी नरसिंहश्री नारायण बनने का लक्ष्य रख करके जल्दी से जल्दी ऐसी ऊंची अवस्था बना सकें, इतने ऊंचाई में जा सकें और सत्युगी दुनिया के मालिक बन सकें। तो फिर से मेडिकल विंग के सभी सदस्यों को और उसके साथ साथ सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं एज स्पीकर्स इन मेडिकल कॉन्फ्रेंस, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो और धन्यवाद भी हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्भय भाई साहब का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे प्रेरणाओं से, इंस्पिरेशन से हम सबको मोटिवेट किया है। और मैं समझता हूं कॉन्फ्रेंस के आने वाले दो दिनों के लिए एक मार्गदर्शन का काम उनके वचन करेंगे। उनके महत्वपूर्ण विचार हम सब के लिए एक ऐसे मापदंड को तय करेंगे जिससे हम आने वाले सफर में अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। पुनः आदरणीय निर्भय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड बॉडी मेडिसिन के इस सत्र में उद्घाटन के लिए हमारे पास एक ऐसी महान विभूति है जिनके लिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिनके होने से रोशन है ये जहां। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी अभूतपूर्व साधनाएं होती हैं जो इस पूरे विश्व को बदलने के लिए इस विश्व का कायाकल्प करने का काम करती हैं। कुछ लोग ऐसे ही विशिष्ट हस्तियां होती हैं जिन्होंने अपने जीवन को ऐसे मोड़ दिया होता है कि जिसे देखकर लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी श्रद्धेय दाती रतन मोहिनी जी, आज ये हमारा सौभाग्य ही सही है कि हम वंदनीय श्रद्धेय दादी जी के आशीर्वचन सुनने के सौभाग्य से अनुग्रहित हैं। मैं अब अनुरोध करता हूं दादी जी से कि इस कॉन्फ्रेंस के प्रति वो अपने ब्लेसिंग्स हमें दें। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी,
आज डॉक्टर्स की इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपका कर्तव्य कितना महान है। आप सबको सेवा स्थल प्रदान करते हो। अभी आपको स्वास्थ्य के साथ साथ खुशी भी प्रदान करनी है। दुनियावी प्राप्तियां से स्थायी खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन ईश्वरीय प्राप्तियों से स्थायी सुख का रास्ता प्रशस्त करती है। सर्व प्राप्ति संपन्न बनने के लिए अपने आप को इस शरीर को चलाने वाली आत्मा समझ अपनी बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ जोड़ना है। जब आप स्वयं उस अलौकिक सत्ता से जुड़कर कार्य व्यवहार में आएंगे तो आपके चेहरे और चलन से, आपके व्यवहार से, आपकी दृष्टि से आत्माओं को संतुष्टता और शांति प्राप्त होंगी। वे तनाव मुक्त हो जाएंगे और उनके शारीरिक बीमारियां भी जल्दी ठीक होने लगेंगी। प्यारे बाबा, आप सभी डॉक्टर्स को डबल डॉक्टर की डिग्री दे रहे हैं। आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उन्हें मानसिक शांति और सुख प्रदान करने के निमित्त बनो प्यारे बाबा की, ब्राह्मण परिवार की और मेडिकल विंग की आप सबसे यही अपेक्षा है। आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मानवता के कल्याण के निमित्त डॉक्टर भाइयों और बहनों, अभी विश्व कल्याण के निमित्त बनने की जिम्मेवारी का ताज धारण करो और इस कलयुगी संसार का परिवर्तन करके सत्युगी दुनिया लाने का बीड़ा उठाओ। इस कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन करने के लिए मैं डॉक्टर बनारसी भाई को तथा उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय दादी जी का, जिन्होंने हम सबके लिए इतने सुंदर ब्लेसिंग्स दिए, उनके आशीर्वचन दिए। मैं आशा करता हूं ये आशीर्वचन हम सबके लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। जीवन के इस लंबे यात्रा में हम हमेशा इन पलों को याद रखेंगे। पुनः एक बार दादी जी आपका कोटि कोटि अभिवादन। दोस्तों, इस उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल जी हैं। ये ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं और साथ साथ WHO के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी ये हाल ही में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस उद्घाटन सत्र में जुड़ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की महत्ता और इससे जो लाभ मिलने वाला है वो उनके अनुपस्थिति से ही पता चलता है कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए मैं आप सबको ले चलता हूं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास। डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल जी अपने विचार हम सबके प्रति व्यक्त करेंगे। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी,
मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में आप सभी से बात करने का सुअवसर मिल रहा है। इस सम्मेलन में उपस्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी तथा समस्त ब्रह्म कुमारी परिवार का अभिवादन करता हूं। ब्रह्म कुमारी संस्थान लोगों में शांति, सद्भावना, भाईचारा और आपसी स्नेह को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्थान में दी जाने वाली आध्यात्मिक शिक्षा से वृहद संख्या में लोगों का जीवन बदला है और बदल रहा है। तनाव, आपसी मनमुटाव, पारिवारिक मतभेद, व्यापार तथा कार्यस्थलों पर भारी दबाव के चलते डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में योग, अध्यात्म, सकारात्मक चिंतन और राजयोग ध्यान के माध्यम से मन को स्वस्थ रखकर तनाव व डिप्रेशन आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। अध्यात्म और योग विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करते हैं। विज्ञान भी अब सहमत है कि योग, सकारात्मक चिंतन और श्रेष्ठ जीवन शैली अपनाकर जीवन को निरोगी और शतायु बनाया जा सकता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान का मेडिकल प्रभाग पिछले 41 वर्षों से सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। नशा, मधुमेह, हृदय रोग आदि से बचाव के लिए संस्थान द्वारा सैकड़ों सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संस्थान के ग्लोबल अस्पताल द्वारा भी स्थानीय लोगों के लिए चिकित्सा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व के जनजीवन को संकट में डाल दिया है। कई देश इस बीमारी के दुष्प्रभावों से गंभीर रूप से जूझ रहे हैं। ऐसे कठिन समय में आपसी सूझबूझ, सतर्कता और सुरक्षा ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। हमारा देश भारत काफी हद तक कोरोना पर नियंत्रण पाने में सफल रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरह इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज इस ऑनलाइन सम्मेलन को भारी संख्या में सुन रहे आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप इस कोरोना संकट काल में लोगों में योग, राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए आंतरिक सशक्तिकरण पैदा करें। साथ ही लोगों को जागरूक करें कि वे मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजेशन अवश्य करें और सामाजिक दूरी अवश्य बनाए रखें। इससे ही हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि संस्थान का मेडिकल प्रभाग पूरे देश में चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े 25 लाख चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इससे चिकित्सकों का उत्साह वर्धन होगा तथा उन्हें और समर्पण और आत्मीयता से मानव सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग का यह प्रयास निश्चित तौर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक और सृजनात्मक परिवर्तन लाने में सफल होगा और लोगों के संपूर्ण स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी जी सहित सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि मेडिकल प्रभाग इस तरह का आयोजन आगे भी करता रहेगा। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी पदाधिकारियों एवं आत्मीय भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल जी का। माननीय मंत्री जी ने हम सबको प्रेरणाओं से भरा और हम सबके लिए मार्गदर्शन भी दिया और ये भी कहा कि हमारे कार्य की सराहना कितनी की जानी चाहिए और आप सभी की भी तारीफें की गई हैं और ये बताता है कि स्वास्थ्य कर्मियों का इस देश के विकास में और पूरे विश्व के लिए क्या योगदान है। मैं पुनः आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में हमारे अगले वक्ता एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके भाषणों से, उनके पब्लिक प्रोग्राम से, उनके टीवी कार्यक्रमों से लाखों लोगों ने उनसे प्रेरणाएं ली हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सचिन परब जी का। डॉक्टर सचिन परब एक जाने माने टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया है। ब्रह्म कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और आज मास्टरिंग द सेल्फ के विषय पर वो हम सब के साथ अपने विचार शेयर करेंगे, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में अपने आप का ख्याल रखने के बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर उसकी शुरुआत अगर हम अपने आप को जानने से और अपने आप को मास्टर करने से कर सकते हैं तो फिर बहुत कुछ आसान हो सकता है। डॉक्टर सचिन परब जी।
ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से बोल रहा हूं। आज हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे जिसका नाम है मास्टरिंग द सेल्फ, माने सेल्फ के ऊपर हम कैसे मास्टरी पाए, खुद के ऊपर कैसे विजय पाए। तो इसके बारे में हम थोड़े समय में देखेंगे, लेकिन ये सब बातें अनुभव की है। स्पिरिचुअलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम अनुभव करने की भी कोशिश करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव और पिछले 25 साल में जो पेशेंट मेरे पास आए हैं काउंसलिंग के लिए और उनको जो टेक्निक बताई है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सेल्फ के ऊपर मास्टरी पाने के लिए सबसे पहला सेल्फ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी मशीन को हम मास्टरी पाते हैं जब उसके मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं कि ये कैसे चलती है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। वैसे तो मैनेजमेंट में हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप में से जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो स्ट्रेंथ होती है जो हमारे लिए भविष्य में अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, जो वीकनेस या कमजोरी होती है वो थ्रेट बन जाते हैं, हमारे लिए धोखा निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं मास्टरिंग द सेल्फ कह रहा हूँ तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम वही करें जो हम करना चाहते हैं और हम वो ना करें जो नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि लोग अक्सर वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, परसेंटेज में है। खास करके एडिक्शन के फील्ड में मैं देखता हूं कि लोगों को समझ है कि एडिक्शन से तकलीफ होती है, नुकसान होता है, फिर भी वो रोक नहीं पाते हैं, जिसको हम कहते हैं हैबिट है या हिंदी में सिंपल शब्द है संस्कार है। और इन संस्कारों के वजह से या आदतों के वजह से हमारी शक्ति लीकेज होती रहती है और हम कमजोर हो जाते हैं और निराशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मास्टरिंग द सेल्फ माना हमारे स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारी विजय हो। ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है उसका लक्ष्य है स्वराज्य अधिकारी बनना, ये थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड है, स्व के ऊपर राज्य करना। और इसके लिए परमात्मा ने हमें दो शक्तियां बताई है, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, ये दो लक्षण है। तो हम देखेंगे इन द प्रोसेस की कैसे कंट्रोल करके रूल करना होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। कोई भी व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए उसका मशीनरी जानना होता है। तो जैसे कि कार को ही अगर हम ले लें, तो कार के अंदर एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच होता है, तो उसको हम एबीसी कहते हैं। समथिंग लाइक दिस एबीसी हमारे अंदर भी होता है। एक्सेलरेटर माना हमारा मन, ब्रेक माना हमारी बुद्धि, और क्लच माना जिससे कि हम गियर्स को चेंज करें, स्पीड को बढ़ाए और कम करें। तो वो हमारी वृत्तियां होती है, या हम एटीट्यूड कह सकते हैं। तो इन तीनों शक्तियों को हम कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में हम देखेंगे। तो धीरे धीरे जैसे गाड़ी को भी कंट्रोल करना होता है, तो हम सडनली कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे स्लो डाउन करना होता है। स्लो डाउन करके फिर उसको स्टॉप करना होता है, तभी गाड़ी रुकती है। आप स्पीड में चल रहे हैं गाड़ी और उसको रोकने की कोशिश करो तो एक्सीडेंट हो सकता है। यही प्रिंसिपल हमारे लिए भी लागू पड़ते हैं। इस समय जो मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर लोगों के विचार बहुत फास्ट चल रहे हैं, या एक्सीलरेटर पे पैर है, या स्पीड में है, बहुत सोचते हैं। हम नेट पे देखते हैं, गूगल में या कुछ स्टडी हुई है कि 40-50-60 हजार थॉट्स 24 घंटे में लोग करते हैं। एग्जैक्ट फिगर कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत विचारों को जन्म देते हैं। और ये विचार या तो बहुत फास्ट चलते हैं, जब भी सिचुएशन आती है बहुत फास्ट चलते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकते नहीं है, या तो फिर ये विचार निगेटिव होते हैं, बदला लेने का भाव होता है, गुस्से के विचार होते हैं, ईर्षा नफरत के विचार होते हैं। ये दोनों को अगर हम जीवन में लाए तो हमारा और दूसरों का हम नुकसान कर सकते हैं। तो गाड़ी बहुत फास्ट है तो उसको स्लो डाउन करना चाहिए, और यहां पर मेडिटेशन का रोल आता है। जितना हम अपने जीवन में पॉज बटन को इस्तेमाल करेंगे, उतना हमारे कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी। पॉज बटन जैसे स्टॉप बटन होता है, प्ले होता है, फास्ट फॉरवर्ड होता है, वैसे पॉज बटन, पॉज बटन माना मेडिटेशन, पॉज माना थोड़े समय के लिए रुक जाना। और ये ब्रह्मा कुमारी में बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है सिग्नल पे, रेड सिग्नल होता है तो हम स्टॉप होते, येलो में स्लो डाउन होते, ग्रीन में जाते हैं, तो बीच बीच में अपने मन के विचारों को स्लो डाउन करने का अभ्यास करना चाहिए। अभी एक दिन में एकदम स्लो डाउन नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम स्लो डाउन होना सीखते हैं। तो पहला अभ्यास अगर मास्टरी लानी है तो बीच बीच में स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता है व्यक्ति कितना भी बिजी हो एक मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकता है। परमात्मा ने तो हमको ये बताया कि जब पानी पीने जाते हैं तो पानी पीने के लिए तो समय मिलता है ना, तो पानी पीते समय या खाना खाते समय, नाश्ता करते समय, रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद हमको बीच बीच में टाइम मिलता है। ऐसा बहुत टाइम मिलता है जब हम स्लो डाउन कर सकते हैं। और जितना आप स्लो डाउन करेंगे तो दूसरी स्टेप आती है, खुद को देखना। ये प्रिलिमिनरी स्टेप्स है लेकिन ये बहुत एसेंशियल है, आगे चलकर इसी के ऊपर मास्टरी आती है, फिर वो स्लो डाउन ऑटोमेटिक होता है। चार स्टेजेस होती है। पहले तो हम कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, माना मुझे पता ही नहीं मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, मैं क्या करता हूं। मेरे पास एक केस आई थी, मुझे याद आ रहा है, तो दैट पर्सन वॉज अ कोच फॉर स्पोर्ट्स, माना स्पोर्ट्स के ट्रेनर थे और उनको स्मोकिंग का एडिक्शन था। तो वो मुझे कहते थे कि मैं कब सिगरेट को लेता हूं, उसको जलाता हूं, फूंकता हूं, खत्म होता है, मुझे पता ही नहीं चलता, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इसको हम साइकियाट्री में कहते हैं ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, एंड्स। तो ये ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है और वो हमारे अवेयरनेस में नहीं रहता है, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आप जब अपने आप को साइलेंस में बिठा कर देखना चालू करोगे पॉज बटन दबा के, तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर के क्योस या डिसऑर्डर या जो भी विचार चल रहे हैं उनके प्रति आप जागरूक होने लगेंगे। तो फिर दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। पहले मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेजॉरिटी लोग इन स्टेजेस को जानते हैं। थर्ड स्टेज पे आती है कि जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हो तो बहुत देर तक आप बैठते हो लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता है। कई लोग मुझे कहते हैं और वो पेशेंस को छोड़ते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कहते हम बहुत समय से मेडिटेशन करते हैं हमको अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करने लगे तो एक ऐसा समय आता है जब हमको अनुभव होता है। भले वो अनुभव बहुत कम समय के लिए हो, एक सेकंड के लिए हो, दो सेकंड के लिए हो, लेकिन होता क्या है कि वो हमारे रिकॉर्डिंग में जाता है, अंदर सबकॉन्शियस में जाता है। हमको पता चलता है कि रिलैक्सेशन क्या होता है, स्लो डाउन एंड पीस क्या होती है। एक्चुअली होता क्या है कि पहले हमारे विचार बहुत केओटिक या फास्ट चल रहे होते हैं। जैसे हम अपने आप को बिठाने की आदत डालते हैं धीरे धीरे पता चलता है कि विचार फास्ट चल रहे हैं और हम साक्षी होने लगते, डिटैच होने लगते और अपने विचारों को देखने लगते, तो उनकी स्पीड कम होती है, रुकती नहीं है, स्पीड कम होने लगती है। एक स्टेज ऐसे आते हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तब हमको हल्का लगने लगता है। हालांकि ये भी अनुभव मेडिटेशन करने वालों के लिए बहुत नेचुरल है। आगे चल के थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज होगी जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। माना मुझे पता चल रहा है कि मेरे विचार वेस्ट ऑफ निगेटिव चल रहे हैं और मैं उनको रोक पा रहा हूं, हालांकि मुझे पूरी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है कि मैं दो विचारों के बीच में जो साइलेंस की स्पेस है उसका अनुभव करने लगता, जिसको हम पीस कहते हैं। एक्चुअली विचार इतने फास्ट चलते हैं कि हमको बीच में साइलेंस की जगह दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम लगातार सही मार्गदर्शन के साथ अभ्यास करते रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है कि हमको पता चलता है कि यस, पीस इज देयर विदिन मी, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो पीसफुल स्पेसेस है बिटवीन टू थॉट्स, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है और मैं खुद को सही तरीके से देख पा रहा हूं तो मुझे पता चलता है कि एक थॉट आया और वो गया, उसके बाद थॉट नहीं है। वो भले फ्यू सेकंड्स के लिए हो, एक सेकंड, दो सेकंड, इसको बढ़ाते जाना चाहिए। धीरे धीरे हम उस अवस्था में ठहरना चालू कर देते हैं। और फिर एक फोर्थ स्टेज आती है जिसको मास्टरी की स्टेज कहते हैं और वो है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। माना हमारे द्वारा नेचुरली पीस, लव, हैप्पीनेस ये वाइब्रेशन निकलने लगते हैं और केवल मुझे ही नहीं लेकिन सामने वाले को भी इसका अनुभव होने लगता है। हमको ये चौथी स्टेज तक पहुंचना है। माना जो हमको यहाँ पर परमात्मा ने सिखाया है, जब चाहे जितना समय चाहे अपने मन और बुद्धि को एक विशिष्ट अवस्था में स्थित कर लेना। अब ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो कितना समय लेता है। हो सकता है जिनका पहले से अभ्यास हो उनको कुछ महीने लगे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, कुछ लोगों को साल लगते हैं, बहुत साल भी लग सकते हैं। और ये फर्क इसलिए है कि आपकी धरनी कैसे है। माना पहले जो कर्म हुआ है उसका रिकॉर्ड है। अभी मेरे पास एक केस आया, उसमें उन्होंने बताया कि मुझे सब कुछ पता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। तो यहां पर व्यक्ति के पास समझ है। मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोगों में हम देखते हैं कि उनके पास समझ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको समझता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको समझता है कि सिगरेट नहीं लेनी चाहिए, हमको समझता है कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं कि कौन सी बात आप नहीं करना चाहते वही आप करते हैं। तो इसको हम कहते हैं अधीन। माना चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। हो जाता है मतलब हमारा वो संस्कार इतना डोमिनेंट है कि हमसे करवा लेता है। माना हम उसको रोक नहीं पाते हैं, रोक पाना पहली स्टेज है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके श्रेष्ठ संकल्प करना वो एडवांस स्टेज है। एक ऐसी स्टेज आती है कि पहले तो गुस्सा आता है, मैं गुस्से का एग्जांपल लू तो क्योंकि कॉमनेस्ट कंप्लेंट लेके आते हैं, फिर पता चलता है कि गुस्सा करने में मेरा ही नुकसान है, फिर पता चलता है कि शांति रखने में फायदा है, फिर सामने वाला गलती करने के बाद गुस्सा आने के बजाय शांति रखने के बजाय रहम की फीलिंग आती है। सो यू हैव चेंज सो मच दैट यू आर कॉन्स्टेंटली नाउ जनरेटिंग पॉजिटिव इमोशंस। आपके द्वारा निरंतर सकारात्मक भावनाएं प्रकंपन निर्माण हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी अवस्था है। और जब इस अवस्था में आते हैं तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। खुशी इसलिए होती है कि पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब है और वो चाहता है कि मैं भी रिएक्ट करूं, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा है, मुझे उसके ऊपर रहम आ रहा है। ये बहुत पावरफुल स्टेज है। कई लोग समझते हैं या कहते हैं कि चुप रहने से लोग आपको कमजोर समझेंगे। रॉन्ग, आई डोंट बिलीव इन दिस। आपको देखना चाहिए सामने वाली व्यक्ति कैसे, उसको क्या जरूरत है, और उसको उस अनुसार उसको पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। हम अभ्यास करते हैं और हमारा ये अनुभव है कि बहुत सारी बातें हम पॉजिटिव वाइब्रेशन से अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अभी इसमें वीकना क्या आते हैं, क्यों हम मास्टरी नहीं कर सकते हैं या पाते हैं या लोगों को टाइम लगता है, तो सबसे बड़ा वीकना इसमें जो है, जैसे भगवत गीता में बताया है छठे अध्याय में पांचवा श्लोक है कि आत्मा अपना ही मित्र है अपना ही शत्रु है। आत्मे व रिपु आत्मा ने कहा है, माना रिपु माना शत्रु कहा है, तो खुद का शत्रु कैसे है, और वो शत्रु है आपका बचपन का प्रोग्रामिंग। किसी ने इसको अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है, सेल्फ डोमेस्टिकेशन कहा है या प्रोग्रामिंग कहा है। हमारे बचपन में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, मैं हर प्रोग्राम के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन बॉटम लाइन ऑफ ऑल दिस प्रोग्रामिंग इज आई कांट डू इट, मेरे से नहीं हो सकता, सिचुएशन इज टफ, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये संभव नहीं है, ये जो ना 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 है ना, ये प्रोग्रामिंग हमारे मास्टरी में विघ्न बनती है। और ये प्रोग्रामिंग, फिर से मैं कहूंगा, ऑटोमेटिक काम करती है, और ये प्रोग्रामिंग आपको बार बार याद दिलाते तुम कोशिश मत करो, तुमसे होने वाला नहीं है, तुमने बहुत कोशिश की, माना ये आपके उमंग उत्साह को कम कर देती है। मैंने देखा है बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो इसका अभ्यास करते 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 निराश हो जाते हैं, जिसको हम कहते दिल शिकस्त, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग को वो ओवरकम नहीं कर पाते। ये बिलीफ पैटर्न्स है, ये बिलीफ पैटर्न्स भी बने कैसे, हमको परमात्मा ने बताया। कई बच्चे कहते हैं कि क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है। अभी नेचर बना कैसे, नेचर बना प्रैक्टिस करने से बना ना नेचर। जैसे गुस्से का नेचर लेके चलो, गुस्से का नेचर बना कैसे, जब बहुत काल गुस्से का अभ्यास किया तो वो नेचर ऑटोमेटिक काम करता है। तो जैसे गुस्से का नेचर बना वैसे शांति का नेचर भी बन सकता है, सिर्फ ये थॉट है। कई लोग बदल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो थॉट उनको बार बार आते रहते। क्या थॉट आते, मैं नहीं बदल सकता, मैंने बहुत कोशिश की, ये नहीं हो सकता। तो ये जो थॉट है वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, इट्स ओनली अ थॉट एंड थॉट कैन बी चेंज। तो हम उनको यही बताते हैं कि ये थॉट है, आप इस थॉट से डरो नहीं, इसको एक्नॉलेज करो, थैंक यू वेरी मच, बट दिस इज अ ओल्ड पैटर्न, ये पुराना ख्याल है, नया थॉट ये है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, आप एक कदम से शुरुआत करो, पहला कदम तो रखो, और पहला कदम है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। ये अभ्यास है और इसका अभ्यास आपको करना जरूरी है। राजयोग मेडिटेशन में फर्स्ट ये बताया जाता है कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। अभी ये थॉट है, ये थॉट जैसे आप क्रिएट करेंगी तो बुद्धि उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अनुभव तब होता है जब मन और बुद्धि एक साथ काम करते हैं, माना जब मन ने थॉट क्रिएट किया, बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है और वो रिकॉर्डिंग में चला जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, आपने जैसे अभ्यास किया डिटैच होने का, साक्षी होके देखने का, तो प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसे आएगा कि एकदम अंधेरे रूम में जैसे थोड़ी लाइट की किरण भी आ गई तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे, क्योंकि पूरा अंधेरा है, डार्कनेस है, उसमें लाइट का छोटा सा प्रकाश भी बहुत काफी होता है। तो इसी लाइट के साथ सहारे हम सूरज के पास जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी स्टेज आती है कि मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी का संस्कार क्रिएट होने लगता है। अभी वो पावरफुल नहीं बना है, निगेटिविटी बहुत पावरफुल है, पॉजिटिविटी में भी फ्यू परसेंटेज है, 1%, 2%, 3%, पर अभ्यास से इसको बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ मेजॉरिटी लोग गिव अप कर देते हैं, और यहाँ पर ही हमको लगा रहना चाहिए। मास्टर और डिसाइपल में यही फर्क रहता है, जो गुरु और शिष्य में, शिष्य जितने प्रयोग करता है, जितने अटेम्प्ट करता है, उतने अटेम्प्ट तो मास्टर ने सक्सेसफुल होने के लिए फेल हो चुका रहता है उतने अटेम्प्ट में, लेकिन वो गिव अप नहीं करता है। हमको सिर्फ जरूरत है श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहने की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी में ये बार बार बताया जाता है कि डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस, और यहां पर मैं देखता हूं लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि इम्पेशेंट होते हैं, उनको लगता है रिजल्ट जल्दी आ जाए। हमारा ऐसा अनुभव है कि जो भी भाई बहने आते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास में, अगर वो सही संपर्क में है, उनके कंपनी वो अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं, पॉजिटिव बातें सुनते देखते हैं, और मेडिटेशन रूम में बैठते जहां पर ऑलरेडी चार्ज एटमॉस्फेयर है, तो आपको इनिशियली इसकी मदद मिलती है। और जब आप इस जैसे मैंने कहा पॉजिटिव संस्कार को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो निगेटिविटी का फोर्स धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि पहले का फोर्स कितना है निगेटिविटी का और अब ये पॉजिटिविटी आप कितना संस्कार क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी स्टेज आती है जब दोनों इक्वल हो जाते हैं और पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी होता है, तब तक आपको कंटिन्यूस प्रयास करते रहना चाहिए, और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और अगर ये करेंगे तो एक हमारे पास ऐसी पावर आती है कि क्लैरिटी आने लगती है। बहुत लोगों को जैसे सीनियर डॉक्टर्स होकर विद एक्सपीरियंस दे गेट क्लैरिटी कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं क्योंकि वो फोर्स रहता है। तो फोर्स को फोर्स से ही काटा जाता है, ठीक है। तो जितना आप स्वयं के साथ बैठेंगे, इसलिए की सेल्फ अवेयरनेस, आप कुछ भी करो सेल्फ अवेयरनेस, ये अटैच और डिटैच होने का जो अभ्यास है, ये जितने बार हम करते जाएंगे तो हमारे पास पावर आने लगती है। और यही अभ्यास सबसे ज्यादा हमको मास्टरी, खुद के ऊपर मास्टरी लाने में मदद करता है। और मेरा ये अनुभव है, वैसे तो साइकियाट्री में बताया जाता है कि ब्रेन पैटर्न्स जो होते हैं या पाथवेज कहते हैं, कई लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये चेंज होने में टाइम लगता है, या कई बार ओल्ड पैटर्न फिर से आ जाता है जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। एक होता है लैप्स और दूसरा रिलैप्स। जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी के पास आया, मेरा गुस्से का संस्कार था, फिर मैंने देखा कि जैसे मैं मेडिटेशन का अभ्यास किया, यहाँ के परमात्मा के महावाक्य रोज मैंने सुनना चालू किया, तो धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम होने लगा। और मैंने नोटिस किया कि एक महीने तक मेरी अवस्था बहुत अच्छी रही, लेकिन एक महीने बाद कुछ ऐसा हुआ, ट्रिगर हुआ, और वो पुरानी फाइल फिर से खुल गया और मैंने गुस्सा किया। अभी एक आध बार किया तो लैप्स है, लेकिन अगर फिर मेरा वो ओरिजिनल पैटर्न आ गया, ओरिजिनल नहीं है वो, एक्चुअली हम उसको रावण के संस्कार कहते हैं, लेकिन वो आ गया, तो इसका मतलब है कि मैं रिलैप्स हो गया। तो मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम एडिक्शन में भी ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से छोड़ने के लिए वो 3-4 बार फेल होता है या बहुत बार फेल हो सकता है, लेकिन वो अगर कोशिश करते रहा, कंपनी उसने अच्छी रखी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इनपुट रखे, तो फिर वो पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होता है, पुरानी हैबिट आती नहीं है और नया संस्कार रूल करता है। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू पड़ता है। लेकिन मास्टरी तब आती है जब एट विल हम उस स्टेज में पहुंच जाए, और इसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअल बातें ध्यान में रखना जरूरी है। और वो स्पिरिचुअल बातें जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमको वो रियलाइजेशन आने लगते, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। सो फर्स्ट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग द सेल्फ। जैसे हम खुद को जानने लगते हैं, इसको मैं ABC कहता हूँ, सिंपल भाषा में अगर आपको याद रखना है तो ABC। ए फॉर
accepting yourself as A for Atma. Accept that you are a metaphysical being. हालांकि ये बातें केवल आयुर्वेद और होम्योपैथी में सिखाई जाती है. आयुर्वेद में तो आत्मा शब्द है, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स है. एलोपैथी वाले आज इस बात को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने लगे कि इट्स अ मेटाफिजिकल बींग. हालांकि भारतवासियों को ये स्वीकार करना सहज है, लेकिन आज स्पिरिचुअल हेल्थ करके हमने ऐड कर दिया. साइक को सोमैटिक डिसीज कहते हैं, तो साइक को हम अदर अलग कर देते हैं. तो साइक माना सोल, कुछ लोग इसको माइंड कहते हैं. माइंड इज अ पार्ट ऑफ सोल एज पर राजयोग मेडिटेशन. तो एक्सेप्ट दैट यू आर अ सोल, फर्स्ट स्टेप ए में से, एबीसी में से एक्सेप्ट यूर सेल्फ. सेकेंड इज एक्सेप्ट यूर सेल्फ एज यू आर. कई बार क्या होता है, हमारा अपब्रिंगिंग डॉक्टर्स का ऐसे होता है कि मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड. तो खुद से जब मिस्टेक्स हो जाती है या हम परफेक्ट नहीं रहते, तो बहुत लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, विच इज विच विल नॉट हेल्प. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो हो, जैसे हो, यू आर वेरी नाइस बींग. इट इज ओके इफ यू डू द मिस्टेक. हम मेडिटेशन में ये सब बातें परमात्मा को सुना देते हैं और परमात्मा हमको अनकंडीशनल एक्सेप्ट करता है. तो खुद को भी अनकंडीशनल एक्सेप्ट करना चाहिए. ए फॉर एक्सेप्टेंस दैट यू आर अ मेटाफिजिकल बींग एंड accepting that your original nature is peace, your original nature is not anger. So, pehla A for accepting three things. Accepting that I am not body, I am a soul. Accepting that aap jo hai jaise hai bahut acche hai. Jisko dusri bhasha mein kehte hai, loving yourself. So, accepting yourself as you are and accepting that your original nature is peace and love. एंड हैप्पीनेस, ये आपका ओरिजिनल नेचर है. इसको बार बार अपने आप को याद दिलाना है. अभी हमको बार बार याद दिलाया गया कि तुम तो गुस्से वाले हो, तुम तो अशांत हो, तुमसे नहीं होगा. ये बार बार सुनाने की वजह से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है सच, लेकिन ये सच नहीं है. सच ये है कि हम ओरिजिनली बहुत अच्छे हैं. वी आर वेरी प्योर, पीसफुल एंड लविंग. सिर्फ हम उसको भूल गए, उसको याद दिलाना है हमको. Second is B. B माना believing yourself that you can do it. ये thought भी बहुत powerful होना चाहिए. पूरा खेल belief system का है. किसी ने कहा है, if you think that you can or cannot, you are right. जब आप सोचते हैं yes I can do it, आपका subconscious mind उसको accept करता है और आप वो कर लेते हैं. बिलीफ को चैलेंज करना चाहिए. ऑल दोज लिमिटिंग बिलीफ जो आपको तकलीफ देते हैं, उस हर एक को चैलेंज करो. हम उसको लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं. उससे अच्छे बिलीफ को हम डेवलप कर सकते हैं. बिलीविंग इन योर सेल्फ यू कैन डू इट. व्हाई? बिकॉज यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड. हम इसको कहते हैं ऑलरेडी एंड ऑलवेज. एक फिलोसॉफी है जिसके अनुसार ऐसे कहा गया कि जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है और ऑलवेज आपके पास है. ये मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूं या ब्रह्मा कुमारी में आने वाले लाखों भाई बहनों का ये अनुभव है कि जीवन परिवर्तन करने के लिए या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्व परिवर्तन के लिए जो भी शक्तियां है वो उनके अंदर है. सिर्फ उसको बाहर निकालना है. अभी निकालने में टाइम जाता है. कुछ लोग जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा पहले धरनी और संघ के ऊपर है. आपकी पहले की धरनी कैसे, धरनी माना जो अंदर कर्म गए हुए हैं, और आपकी कंपनी कैसे, उस अनुसार आपकी फाइल ओपन अप होगी. हमारे अंदर ओरिजिनल फाइल बहुत अच्छी है. उनको एक्टिवेट करने के लिए डेली मेडिटेशन और पॉजिटिव कंपनी हम रखेंगे. तो मेरा ये अनुभव है बहुत शॉर्ट टाइम में हम इनको एक्टिवेट कर पाते. तो बिलीविंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. और सी इज चेंज योर सेल्फ. चेंज करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. कई लोग चेंज को समझते नहीं अच्छी तरह से. देखो कोई भी चेंज आप करने जाओगे ना तो इनिशियल रेजिस्टेंस आना ही है, जिसको भारतीय तत्वज्ञानियों ने माया कहा है. माया और कुछ नहीं है. माया इज रेजिस्टेंस विच कम्स फ्रॉम विद इन वेन एवर वी थिंक ऑफ चेंजिंग अवर हैबिट्स और द पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग. तो ये रेजिस्टेंस क्यों आता है? ये रेजिस्टेंस आना भी जरूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस से एनर्जी जनरेट होती है. तो रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि आप कंफर्ट जोन के बाहर आ रहे हैं. क्योंकि अभी तक कंफर्टेबल थे, लेकिन आप कंफर्ट जोन के जैसे ही बाहर आएंगे तो अंदर से ये मैकेनिज्म है क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा होमियोस्टेसिस में रहना पसंद करती है, जैसे वैसे बहुत अच्छा है क्यों चेंज करने का। लेकिन नहीं, जैसे आप ये श्रेष्ठ संकल्प करोगे, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सुबह जल्दी उठने का हो सकता है, या वेजिटेरियन डाइट का हो सकता है, या सिटिंग इन मेडिटेशन का हो सकता है, अंदर से आता है कि नहीं नहीं क्या करने से, इससे कुछ नहीं होता है, जैसे बहुत अच्छे हैं, तो ये रेजिस्टेंस आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि स्टार्ट विद अ स्मॉल चेंज। बड़े चेंज आप शुरुआत से ही लाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है और फिर डिस्करेज हो जाते हैं। हम हमेशा ऐसे कहते हैं स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, और उस स्मॉल थिंग क्या है, कुछ नहीं करो। मैं जैसे सबको बताता हूं, एक थॉट, पॉजिटिव थॉट ले लो। ब्रह्मा कुमारी के सभी सेंटर पर डेली एक क्लास चलता है जिसको मुरली क्लास कहते हैं, जिसमें परमात्मा के महावाक्य चलते, उसमें का एक पॉजिटिव थॉट आप ले लो और दिन भर उस थॉट को रिवाइज करो अपने माइंड के अंदर। और दूसरा तरीका है, जब भी आपको बीच में टाइम मिले, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए, जब आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो, स्नैक्स लेते हो, या सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले, जब भी आपको टाइम मिले, एक मिनट अपने आप को डिटैच करके साइलेंस में चले जाओ, जिसको हम सोल कॉन्शियस होना बताते हैं, कि अपना ध्यान दो आंखों के बीच में लेकर जाके स्वयं को थॉट देने का, आई एम अ पीसफुल बींग ऑफ लाइट, आई एम अ पीसफुल बींग ऑफ लाइट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सिर्फ ये एक थॉट, और उस थॉट के साथ रहने की कोशिश करो। हो सकता है आपको शुरुआत में अनुभव नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे अगर गाइडेंस के साथ आप करते हो तो आपको पता चलता है कि यस, हल्के रहना, पीसफुल रहना पॉसिबल है। केवल अभ्यास की बात होती है, इसकी टेक्निक आपको सभी सेंटर पर सिखाई जाएगी। और जैसे आप ये एबीसी प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपको अनुभव होने लगता है सेल्फ का, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन ये शुरुआत है, ये शुरुआत है मास्टरी की। तो धीरे धीरे जैसे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा, फिर और एक शक्ति इसमें ऐड हो जाती है, वो है राजयोग मेडिटेशन, वो है सुप्रीम पावर या परमात्मा की शक्ति। तो होता क्या है, जैसे हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, या जोड़ना बहुत इजी हो जाता है हमारा, क्योंकि वो परमात्मा जो है एज पर राज्य का, वो आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है। तो वो शरीर को नहीं, आत्मा को शक्ति देता है। तो जैसे हम सोल कॉन्शियस होते हैं या खुद को रियलाइज करते हैं कि आई एम अ मेटाफिजिकल बीइंग ऑफ लाइट कंट्रोलिंग दिस बॉडी, तो मुझे ऊपर से एक शक्ति भरने का एहसास होने लगता है। या तो ये नेचुरली होता है, या आई कॉन्शियसली क्रिएट अ थॉट ऑफ कनेक्टिंग टू द सुप्रीम एनर्जी। नेचुरली हो या हम कॉन्शियसली करें, हम एक और एनर्जी का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम एनर्जी। और जैसे ही वो आती है, हमारे अंदर एक ब्लिस, आनंद का अनुभव या शक्ति स्वरूप का अनुभव करते हैं हम, और इस स्टेज में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास करें। जब ये शक्ति हमारे अंदर भरने लगती है तो बहुत पावरफुल अवस्था रहती है, और इस अवस्था में हम जब चले जाते हैं तब हमको बोलने का दिल नहीं करता है, क्योंकि हमको रियलाइज होने लगता है कि बोलने से एनर्जी वेस्ट हो रही है, और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और हम ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहने का, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्टेज होती है वो हमको खींचने लगती है, वो जितनी बार बार खींचेगी उतना वो नया संस्कार हमारा इमर्ज होने लगेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें निरंतर युद्ध चलते रहता है। जो महाभारत का युद्ध भगवद गीता में बताया, एक्चुअली ये हमारे अंदर चलने वाला युद्ध है, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में, जिसको सुर और असुर कहा है, इनका युद्ध हुआ था। ये हमारे अंदर चलता है, और शुरुआत में केवल असुर जीतता है, बीच बीच में सुर जीतते हैं, माना निगेटिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम जीतते हैं, पॉजिटिविटी कम जीतते हैं। धीरे धीरे अगर आप ये जर्नी कंटिन्यू करो तो एक ऐसी अवस्था
आने लगती है कि पॉजिटिविटी जीतने लगती है, पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी होता है और धीरे धीरे पॉजिटिविटी ही रहने लगती है। अब ये जर्नी कितनी लंबी होगी हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितनी हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हम ज्यादा से ज्यादा समय पॉजिटिव रहना पॉसिबल है, संभव है, ऐसा हमारा अनुभव कहता है। और बीच बीच में फिर अपनी अवस्था को रीइन्फोर्स करना चाहिए और फिर एक ऐसी स्टेज आते है जिसको मास्टरी कहते हैं कि मेरे विचार मेरी इच्छा के विरुद्ध क्रिएट नहीं करेंगे कुछ भी। आई कैनॉट क्रिएट अ नेगेटिव थॉट, इट इज अगेंस्ट माई, मुझे पॉजिटिव रहने में खुशी होती है और मैं नेचुरली पॉजिटिव रहता हूँ। देखो एक है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम सोच रहे हैं उसके ऊपर, इट इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। लेकिन मैंने जो फोर्थ स्टेज की अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मैं नेचुरली पॉजिटिव हूं ही, नेगेटिविटी मुझे नहीं पता क्या होती है, मेरे अंदर से नेचुरली पॉजिटिविटी निकली। ये जो अवस्था है ये बहुत अच्छी अवस्था है। हमारे जो सीनियर राजयोगी है, हमारी वरिष्ठ दादियां है, इन्होंने अभ्यास की अवस्था को प्राप्त किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, जिनको मैंने राजयोग के लिए रिफर किया और जो सिंसियरली इसका अभ्यास करते हैं, तो मैंने देखा है कि हम अपने ब्रेन पैटर्न्स को बदल सकते हैं। मैंने बहुत सारे हार्डकोर एडिक्ट जिनको दुनिया ने गिव अप करना, क्योंकि एडिक्शन इज अ ब्रेन डिसीज और बाकी सभी हमारी जो आदतें है वो भी एक ब्रेन पैटर्न होता है, तो उसको बदला जा सकता है अभ्यास के द्वारा। ये जो ग्रूव्स बनी हुई है हमारे ब्रेन के अंदर उसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, पर इसके लिए अभ्यास लगातार करना जरूरी है। तो इस एबीसी को ध्यान में रखे, फोर स्टेजेस को ध्यान में रखे, स्टार्ट स्मॉल एंड वन स्टेप एट अ टाइम, और धीरे धीरे अगर आप ये चेंजेस लाएंगे तो मेरा ऐसा अनुभव है, खुद के अनुभव से मैं ये कहता हूं कि आप अपने आप को बदल सकते हैं और श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो सकते हैं। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि आप बीच बीच में जितना आपकी पावर है, जितने आपने अपने अंदर संकल्प शक्ति या थॉट पावर को इकट्ठा किया है, आपके काम थॉट पावर से होने लगते हैं। ये मैग्नेटाइज थॉट हो जाता है, जिसको हम मैजिकल बोलते हैं, माना मैजिक हो गया या मिराकल हो गया कहते हैं, पर ये हम अनुभव करते हैं। जो मेडिटेटर्स हैं वो अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि कई बार मिराकल हो जाते हैं, हम सोचते हैं और वो काम हो जाता है। इसके लिए विशेष हमारा ये अनुभव है कि मॉर्निंग का 4 बजे का जो अमृत वेला है, अमृत वेला मेडिटेशन, या शाम का 6:30 से 7:30 का मेडिटेशन है, इसको हम निरंतर करें। ब्रह्मा कुमारी इसमें कुछ दिनचर्या बनाए हुए, क्योंकि हम निरंतर ये देखते हैं कि हमारी अवस्था होल डे पॉजिटिव कैसे मेंटेन रहे, क्योंकि दिन भर वेकिंग स्टेज में अगर हम पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं तो हमारे स्लीप भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दिन भर मेंटेनेंस के लिए कुछ अटेंशन हम रखते हैं, जैसे सुबह उठ के मेडिटेशन करना, फिर 6 से 7 मेडिटेशन, 7 से 8 क्लास, फिर हर 2-2.5 घंटे में हम ट्रैफिक कंट्रोल करते, माना माइंड के ट्रैफिक को कम करते। तो वो सुबह 4 बजे, फिर 5:45, 7 बजे, 10:30, 12 बजे, 5:30, 7:30 और 9:30 बजे, तो ये सब कंटिन्यूअसली ट्रैफिक कंट्रोल हमारा चलता रहता है। उसके ऐप भी अवेलेबल है, बहुत खुशी की बात है कि ये ऐप अवेलेबल है और हम अपने आप को उस टाइम पे प्रोग्राम करते हैं। और एक तरीका है कि हर घंटे में 1 मिनट स्टेज में चले जाना, और खास करके जो बिजी लोग होते हैं, मेरे आंखों के सामने बिजी डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्सेस आ रहे हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो आ रहे हैं, अगर बीच बीच में थोड़ा समय भी हम निकालें तो मुझे नहीं लगता है कि ये कठिन है। ये थॉट इट्सेल्फ इज अ प्रॉब्लम है, ये सहज है, ये संभव है, ये अभ्यास से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारी मास्टरी आती है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, हमारी इफिशियंसी अच्छी रहती है जहां हम जाते हैं, और हम
सक्सेस को फील करते हैं हर फील्ड में। ऐसे नहीं कि नेगेटिविटी नहीं आते, कई लोग समझते हैं कि मेडिटेशन माना नेगेटिविटी आए ही नहीं। नो, मेडिटेशन डजंट क्रिएट अ मिराकल। मेडिटेशन में कुछ चेंज नहीं होता है, मेडिटेशन चेंजेस यू, एम्पावर्स यू फॉर द सिचुएशन। माना मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन से हम अंदर से शक्तिशाली बनते हैं ताकि जो परिस्थिति हमारे सामने आए उसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। तो आइए राजयोग का अभ्यास करें, इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझे। इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज गिवन बाय द सुप्रीम सोल। और लाखों भाई बहने इस समय पूरे विश्व में इसका अभ्यास कर रहे हैं। मैं तो विशेष एडिक्शन में इसमें सेवा दे रहा हूं, तो मैंने लोगों की आदत बदलते देखी है। वेदर यू आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और नॉट, हैबिट्स आर देयर विच आर डैमेजिंग अस, विच आर कॉजिंग निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और बहुत लोगों को लगता है कि तंबाकू शराब ये हैबिट है। आई एम सॉरी, सबसे कॉमनेस्ट हैबिट जो मैंने देखी है कि दैट इज एडिक्शन ऑफ वेस्ट एंड निगेटिव थिंकिंग। ये भी एक हैबिट ही है, हैबिचुअल वेज ऑफ थिंकिंग निगेटिवली, हैबिचुअल वेज, फर्स्ट थॉट इज निगेटिव। तो ये भी एक ऑब्सेशन के लेवल पर पहुंच गया है जिसके वजह से हम परेशान है। तो एडिक्शन केवल तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस का नहीं होता है, विचारों का भी एडिक्शन होता है। कई लोग अपने इमेज से भी अटैच हो जाते हैं, रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। तो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है या आदत है जो हमको नुकसान देते हैं। तो मास्टरिंग द सेल्फ में जितना हम खुद के प्रति अवेयर होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं और सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, एक क्लैरिटी आती है और एक पावर आने लगते है कि यस आई कैन डू इट, मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकता हूँ। यस, मेरा ओरिजिनल नेचर पीसफुल है, मेरा ओरिजिनल नेचर पावरफुल है, और यस मैं खुद को बदल के मेरे आजू बाजू का वातावरण को भी बदल सकता हूँ, और यस मैं प्रकृति को भी सुख दे सकता हूँ और मेरे संबंध संपर्क में आने वाले लोगों को भी मर्यादा में रहते हुए मैं सुख के वाइब्रेशन भेज सकता हूँ। एंड आई लिटरली गेट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट इज नोन एज गॉड्स एंजल। और जहां मैं जाता हूँ मैं अपने वाइब्रेशन को फैलाता हूँ। मुझे मिलने से लोगों को शांति और प्रेम या फिर पावर या एनकरेजमेंट, ऐसे पॉजिटिव इमोशंस लोगों को आते हैं। और यह हमारा अनुभव, मेरा ही नहीं बहुत भाई बहनों का अनुभव है जो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। तो आप सबको मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए मुबारक देता हूँ। सभी स्पीकर्स के सेशन आप ध्यानपूर्वक सुने। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर तो आपको पता है। आप सबको आपके भविष्य के जीवन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे योगी बने, ब्रह्मा कुमारी 7 डेज राजयोग का अभ्यास करें और परमात्मा से अपना जो वर्षा है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो प्राप्त करें। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन परब जी का, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से और इतने मोटिवेटिंग तरीके से हम सबको मास्टरिंग द सेल्फ के बारे में बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन। राजयोग मेडिटेशन इन हीलिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस, टॉपिक ही बड़ा मजेदार लगता है ना, कि जब हीलिंग के प्रोसेस में राजयोग कैसे मदद करता है, उसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, क्या अनुभव लोगों को हुए हैं, ये सब जानने वाली बातें हैं। और हम जानते हैं कि विज्ञान के तर्ज पर जब भी हम किसी चीज को प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रयोगशाला होती है, लोग प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद अनुभव हासिल होते हैं। ऐसे ही कुछ गहरे अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए और कुछ अनुभव कराने के लिए एक बहुत ही वरिष्ठ राजयोगी भाई को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में जिन्होंने 50 वर्ष से भी अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, राजयोग के विभिन्न प्रयोगों को अपने जीवन में किया है और लाखों लोगों से करवाया है, ऐसे एक अकम्प्लिश्ड योगी, बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध टेलीविजन पर्सनैलिटी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको माइंड बॉडी मेडिसिन के इस इनॉग्रल सेशन में इन सुंदर विचारों के साथ ओतप्रोत करें। ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी।
ओम शांति। सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सभी भाई बहनों को ओम शांति, नमस्ते। राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारी इम्यून पावर भी बढ़ती है, हमारे संकल्प पॉजिटिव होते हैं, न केवल पॉजिटिव लेकिन बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं। और जब हमारे मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है तब हम अपनी बीमारियों को मन की शक्ति से हील कर सकते हैं। राजयोग में हमारी मन की शक्ति बहुत बढ़ने लगती है। क्या है ये राजयोग? पहले राजयोग के अभ्यास में हम सोल कॉन्शियस होते हैं, ये देह अलग है, मैं आत्मा, ए सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी, ए मोस्ट पावरफुल, इनविजिबल, इमॉर्टल, अविनाशी हूं, मरती नहीं। आत्मा यहां रहती है, सोल रिजाइड्स हियर, सटल पॉइंट ऑफ लाइट। सो मैं आत्मा हूं, आई एम ए सोल। पहले हमें अपने को ये कॉन्शियसनेस देनी होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण मनुष्य को पीड़ा यानी पेन ज्यादा फील होता है। जब मनुष्य सोल कॉन्शियस हो जाता है तो पेन होते भी पेन की फीलिंग कम रहती है। तो पहले हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सोल के बारे में चिंतन करते हैं, कुछ थिंकिंग करते हैं, आई एम ए पीसफुल सोल, लवफुल सोल, वेरी प्योर, वेरी पावरफुल, ब्लिसफुल, लाइक दिस। फिर हम अपना कनेक्शन ऑलमाइटी से जोड़ते हैं। ऑलमाइटी इज ऑल्सो सुप्रीम सोल, आवर सुप्रीम फादर, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्योरिटी इज ऑल पावरफुल। जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं, उसे कनेक्ट होते हैं, तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, उसकी प्योरिटी हमारे अंदर आती है, उसका लव हमें फील होता है, उसकी पीस हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। जैसा सभी जानते हैं कि आज पीसलेसनेस के कारण, टेंशन के कारण, चिंताओं के कारण, निगेटिविटी के कारण, होल्डिंग नेचर के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। और जब किसी मनुष्य को बीमारी हो जाती है, अगर वो बहुत निगेटिव है, बहुत हैवी हो गया है, टू मच थिंकिंग कर रहा है, तो उसकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, दवाइयों की पावर भी कम काम करने लगती है। तो राजयोग जब हम अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। हम सवेरे उठकर राजयोग का अभ्यास करते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रैक्टिस राजयोग, और अपने मन को सुंदर संकल्पों से भरते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, अवेकिन रहता है, और उस टाइम जो थॉट्स हम अपने को देंगे यानी जिसको कमांड कहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वैसा ही करने लगता है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज आप सब जानते हैं, हिंदी में एक सेइंग है, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी तो सवेरे सवेरे हम अपने को हैप्पीनेस से भर लेते हैं, सुंदर विचार करके, भगवान से मिलन के एक्सपीरियंस करके हम अपने को खुशी के संकल्पों से भर लेते हैं, और उसमें एक सुंदर संकल्प कर लेते हैं, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोस्ट हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम स्ट्रेस फ्री, आई एम वेरी लवफुल, वेरी लविंग, आई एम वेरी पावरफुल। सो सवेरे सवेरे हम अपने माइंड को जैसे चार्ज कर लेते हैं। देखिए एक बहुत सटल चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आवर ईच एंड एवरी थॉट जनरेट्स एनर्जी। आत्मा यहां है, आत्मा में ही मन और बुद्धि है। देखिए तीन चीजें हैं, मन बुद्धि ब्रेन, ये तीनों सेपरेट हैं। मन बुद्धि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां और ब्रेन के बारे में आप जानते हैं। तो मन से जो कुछ हम सोच रहे हैं उसे एक एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी सबसे पहले हमारे ब्रेन में फैलती है, बॉडी में फैलती है। ये बहुत सटल फिलॉसफी है, इसको सभी को जान लेना चाहिए कि हमारे संकल्पों का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, बॉडी पर भी पड़ता है। परंतु क्योंकि ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो ब्रेन अगर साउंड है, पावरफुल है, तो बीमारियां सहज ही समाप्त की जा सकती हैं। आज यही तो हुआ संसार में कि मनुष्य का मन बहुत वीक हो गया। ही थिंक्स टू मच, ही हैज निगेटिव थिंकिंग टू मच, एंड देयरफॉर He is creating negative energy in his mind and it's going into the brain. ये अनेक समस्याओं का कारण है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन आ गए, फोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसको आप जानते हैं, आजकल के बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं। नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती रहती है, रेडिएशन की बात तो आप जानते ही हैं। ये अनेक बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण है। मैं एक चीज और आपके सामने रख रहा हूं, आप इस पे चिंतन करें, थिंक करें, गहराई से थिंक करें। मुझे पता नहीं आपकी मेडिकल कोर्सेज में आपकी जो नॉलेज है उसमें इस चीज का कितना वर्णन है, पर बात यह है कि गर्भ में जब ब्रेन बनता है, ब्रेन में डेफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ब्रेन कैसा बना, बहुत स्ट्रांग बना, बहुत वीक बन गया, मैच्योर हो गया, इमैच्योर रह गया, ये सब इसका कारण है। आत्मा जब देह में प्रवेश करती है गर्भ में, हम आत्माएं हैं, हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, वी टेक रीबर्थ, रीइनकार्नेशन। व्हेन सोल एंटर द वूम्ब, तब ब्रेन का फुल्ली डेवलपमेंट होता है। सोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, नाउएडेज ऑल सोल्स हैव बिकम वेरी वीक, देयर माइंड आर वेरी वीक, एंड दिस इज व्हाई एवरीवन्स ब्रेन इज आल्सो वीक। ऐसा नहीं, टेंशन पहले नहीं थी, प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन ब्रेन बहुत पावरफुल था, माइंड बहुत पावरफुल था, इसलिए बीमारियां बहुत कम थी। अब माइंड भी वीक है, ब्रेन भी वीक है, तो एक बहुत जरूरी चीज हो गई कि हम अपने माइंड को पावरफुल करें, हम अपनी बुद्धि को डिविनाइज करें। अब देखिए आजकल कॉलेजों में डिग्री मिल रही है, लेकिन उन्हें मॉरलिटी तो नहीं सिखाई जा रही है। बहुत सारे आप लोगों के परिवार भी होंगे जिनमें वाइफ एंड हस्बैंड का झगड़ा चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ ईगो एंड एंगर, बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, झगड़े चलते हैं, अशांति रहती है। और आप सब बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरे से भी ज्यादा, यही कारण है मानसिक रोगों का। संबंधों का जो टकराव आजकल है, दिस इज द रीजन ऑफ साइकेट्रिक डिजीज एवरीवेयर, और ये डिप्रेशन साइकेट्रिक डिजीज जिसको आप भिन्न भिन्न नाम देते हैं, ये संसार में बहुत बढ़ती जा रही है। दवाई इसमें ज्यादा काम नहीं करती। तो हम सभी राजयोग के द्वारा, इस स्पिरिचुअल पावर के द्वारा अपने को हेल्दी भी रख सकते हैं, और जो साइकेट्रिक डिजीज हैं, मन के जो रोग हैं, उनको तो पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कराए, और ये संख्या दो चार में नहीं कई हजारों तक पहुंच गई है। जो लोग इससे लाभ ले रहे हैं, जिनकी बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं, मैं वो चीजें भी आपके सामने रखूंगा। देखिए, वो चीजें कहीं लिखी हुई नहीं है, वो स्पिरिचुअली हम जानते हैं, है तो गॉड्स ग्रेस, उसकी ब्लेसिंग्स, लेकिन हमने जो कुछ कराया है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते थे, फिर उसके एक्सपीरियंस होने लगे बहुत ज्यादा, फिर हमने ये बहुत जगह सिखाई और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको एडॉप्ट किया। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे मिलते हैं और कहते हैं हम ये कराते हैं पेशेंट को, रिजल्ट बहुत ही सुंदर मिलते हैं। जो रिजल्ट पहले नहीं मिलते थे वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। पर जरूरत इस चीज की होती है कि हम राजयोग के द्वारा अपने को पावरफुल बनाएं, तब हमारे संकल्पों में पावर होगी, तब हमसे पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। हमें बहुत हम्बिल भी बनना होता है, वी हैव टू बिकम वेरी पोलाइट, ईगोलेस, वेरी हम्बिल, वेरी स्वीट, आवर बिहेवियर मस्ट बी वेरी रॉयल। ये बहुत जरूरी है जो हम सभी को सीखना है और समाज को सिखाना है। तो पहले सभी एक संकल्प मन में करें कि हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है, और स्पिरिचुअल पावर और कुछ नहीं, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ इंटेलेक्ट, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल पावर। ये कुछ और दूसरी पावर्स नहीं है, ये हमारी अपनी पावर है। हमारा मन पॉजिटिव होने लगे, हमारे मन में संकल्पों की स्पीड स्लो डाउन हो जाए, तो वी बिकम पावरफुल। हम अपने मन को ऑलमाइटी से जोड़ दें, वी बिकम पावरफुल। ये हमें रोज करना है। आप सभी जो डॉक्टर्स हैं, आप सभी को, चाहे आपका मेडिकल स्टाफ है, नर्सिज है, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, उन सब से वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस पेशेंट्स को बहुत मदद करते हैं। मान लो एक व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, कोई भी आपका स्टाफ है, वो घर से लड़ाई करके आ गया, उसके मन में बहुत टेंशन है, उसके वाइब्रेशंस आपके चारों ओर के वाइब्रेशंस को हैवी बनाएंगे। इसमें पेशेंट्स को भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। इसलिए अपने चारों ओर के वाइब्रेशंस को लाइट रखना, लवफुल बना देना, पावरफुल बना देना, पीसफुल बना देना, ये बहुत जरूरी है, और ये कला हम सभी राजयोग के द्वारा सीखते हैं। तो राजयोग समय की एक डिमांड हो गई है, इट इज द नीड ऑफ द आवर। इसके बिना अभी संसार को हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेरी बात आप याद रखना, प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, डिजीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कोर्ट केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैनी मैनी निगेटिविटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। देयरफॉर स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट। बिना स्पिरिचुअलिटी के अब लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। हम बहुत पावरफुल थे, देयर वॉज ए टाइम व्हेन वी ऑल हैड बीन परफेक्ट, वी मस्ट नो इट, एंड व्हेन वी वर परफेक्ट Life was full of happiness, peace, prosperity. Relationships were very sweet, very good. Everything was positive. अब खेल बिगड़ा है. आप सब देख रहे होंगे मैं एक बात कहा करता हूं. डोंट माइंड प्लीज. कि अब से 50-60 साल पहले बीमारियां बहुत कम थी. 100 साल पहले तो बीमारियां बहुत कम थी. मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ी लेकिन बीमारियां उससे ज्यादा बढ़ी. रिसर्च होती रही, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते रहे. मैं कहूंगा रोज खर्च होते हैं करोड़ रुपए तो मेडिकल साइंस पर. डेवलपमेंट हुआ एलोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथी में भी, और बहुत सारी जो अल्टरनेटिव थेरेपी चल रही हैं लोगों ने डेवलप की हैं. एलोपैथी मेडिकल साइंस ने बहुत काम किया, बड़ा सूक्ष्म कर दिया हर चीज को. दे वेंट टू द सटल लेवल ऑफ एवरीथिंग. लेकिन बीमारियां भी तो बढ़ती जा रही हैं. तो सभी को चिंतन करना है क्यों क्यों हम मेडिकल साइंस वाले बीमारियों को रोक नहीं पाए. बहुत लोग आते हैं कोई इलाज नहीं है. डॉक्टर कह देते इस बीमारी का इलाज ही नहीं है. हम उन्हें मदद करते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं और बहुत चीजें ठीक होती हैं. मेरे पास ऐसे फोन कॉन्टेक्ट अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, अफ्रीकी देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से आते हैं बहुत. हम उनको स्पिरिचुअल चीजें सिखाते हैं. पहले तो उनमें एक साहस भरते हैं, एक कॉन्फिडेंस भरते हैं, आप ठीक हो जाओगे. हमारे पास एक युवा पेशेंट अभी भी है, शांतिवन हमारा एक बड़ा कैंपस है. उसको कुछ पेट में ऐसी बीमारियां थी कि डॉक्टर सेड इट्स इनक्योरेबल और अभी मृत्यु ही निश्चित है, कोई इलाज नहीं है. हमने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, उसके मन को बहुत पॉजिटिव किया. और एक चीज मैं सभी डॉक्टर्स को कहना चाहता हूं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोने से पहले अगर हम उसको कुछ संकल्प दे दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो सारी रात, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, इट इज एक्टिव, फुल्ली एक्टिव ऑल नाइट, उसमें उस समय मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है. तो अगर सोने से पहले जब हमें नींद आ रही हो, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स दे दें, कमांड दे दें, मैं इस रोग से मुक्त हो गया, पॉजिटिव संकल्प हमें देने हैं. जैसे बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरी हार्ट की ब्लॉकेज पूरी तरह खुल गई है, आर्टरी बिल्कुल खुल गई है, सब अच्छा हो गया. जैसा भी जिसको रोग है, तो ये मन की शक्ति मनुष्य को निरोग बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगी. तो मैं उस युवक को सिखाया, ये स्ट्रांग किया कि नहीं तुम मरोगे नहीं, तुम्हें जीना है, काम करने हैं संसार में. लाइफ इज इंपॉर्टेंट. अपने मन में संकल्प कर दो मुझे 20 साल जीना है. और रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट भर के सो. कुछ और चीजें मैंने सिखाई जिन पर मैं आ रहा हूं. थोड़ी बहुत मेडिसिन भी उसकी चलती रही. बहुत ठीक हो रहा है, जी रहा है. इस बात को 2 साल हो गए हैं लेकिन वो जी रहा है और ठीक ठीक जी रहा है. कोई पेनफुल लाइफ उसकी नहीं है, अच्छी लाइफ है. तो हम सभी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर भी ध्यान दें, राजयोग का अभ्यास कर लें. हमें भूलना नहीं चाहिए हर शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसके अंदर एक आत्मा है जो यहां बैठी है. ब्रेन उसका कंप्यूटर है जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, लेकिन ब्रेन को भी कमांड देने वाली आत्मा है. आजकल इस बात पे बहुत रिसर्च हुई है कि ब्रेन को भी कहीं से कमांड मिलता है. तो हम सभी जोड़ दें स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिस के साथ, तो आपको बहुत सफलता होगी. यू विल बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर. सो बिकम डबल डॉक्टर. स्पिरिचुअल डॉक्टर्स टू. सो मैं आपको वो सब एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो हमने कराए. आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, लेकिन मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं संसार के लोगों को बहुत सुख दूं, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने में उन्हें मदद करूं, उन्हें कुछ अच्छी गाइडलाइन दूं, ताकि वो बहुत सारी दुविधाओं से बाहर निकल जाएं. तो पहली एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जापान के डॉक्टर्स ने ही पानी पर वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट है इसके बारे में काफी काम किया. हमारे यहां भी वो डॉक्टर आई थी, तो मैंने उसकी एक 5 मिनट की क्लिप देखी, तो कैसे उन्होंने पानी पर, एक छोटी सी बात सुना रहा हूं, एक पानी के गिलास पर लिख दिया हेट, दूसरे गिलास पर लिख दिया लव, कागज पर चिपका दिया, सारी रात पानी को रूम में रख दिया सेम टेम्परेचर में फॉर 12 आवर्स, एंड व्हेन दे एग्जामिन नेक्स्ट मॉर्निंग दे फाउंड कि जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, जिस पे हेट लिखा था ब्लैक और गंदे क्रिस्टल फॉर्म हो गए थे अंदर. तो बस ये बात सुनते ही मुझे एकदम क्लिक हुआ कि हमारे बॉडी में तो 70% से ज्यादा पानी है. अगर हम इस पानी को प्योरीफाई कर दें, अगर हम इस पानी को चार्ज कर दें, तो कितना अच्छा हो जाए, बीमारियां भाग जाएंगी. और मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कराए, खुद पे किए, दूसरों पे कराए. फीवर के केसेस में तो इतना इफेक्टिव रहा कि अमेजिंग. आई माई सेल्फ वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है. मैंने देखा कि हर मनुष्य के मन में निगेटिविटी ज्यादा है, किसी के मन में क्रोध है, हेटफुल फीलिंग है, लव बहुत कम रह गया, कोई चिंता में बहुत रहते हैं, परेशान रहते हैं. तो ये हमारे अंदर का जो पानी है ये तो पूरा पोल्यूट हो जाता है. क्या हाल होता होगा उस वाटर का, अगर एक वाटर पे हेट लिखने से गिलास पर वो पानी उसमें ब्लैक क्रिस्टल्स पैदा हो गए, तो जिनके मन में गंदगी ही गंदगी है उनके पानी का क्या होता होगा शरीर का. तो बीमारियां तो होंगी, किसी को हाई बीपी होगा, कैंसर होगा, हार्ट आर्टरीज ब्लॉक होंगी और कई चीजें आएंगी. तो पानी को हमने चार्ज करके पेशेंट्स को पिलाना शुरू किया और उसकी विधि अपनाई. पानी का गिलास लिया, उस पर दृष्टि डाली और 7 टाइम याद किया आई एम ए पावरफुल सोल. इसके लिए एक शब्द है हमारी स्पिरिचुअलिटी में, मास्टर ऑलमाइटी. सो आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, यानी आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल. पानी ने रिसीव कर लिया पावर को, पिलाया बुखार वालों को, ठीक होने लगे. देर से नहीं, 15 मिनट में ठीक, आधे घंटे में ठीक, टेम्परेचर डाउन. और बीमारियों पर भी मैंने ये चार्ज्ड वाटर को यूज करके देखा, बहुत फायदा होने लगा, क्योंकि सारे पानी को प्योरीफाई करने लगा, ये एनर्जेटिक करने लगा. दूसरा थॉट भी रखा, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल. बहुतों को मैंने ऐसे भी कराए, कई लोग आए जिन्होंने कंप्लेंट की कि दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइव्स. मैंने उन्हें कहा पानी को चार्ज करो, पानी पे नजर डालकर संकल्प करो, आई एम मोस्ट हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोस्ट हैप्पी पर्सन, आई एम मोस्ट हैप्पी पर्सन 7 टाइम्स, एंड देन ड्रिंक दैट वाटर. खुशी बढ़ने लगी लोगों की. पानी में मेमोरी बहुत ज्यादा होती है और पानी में जिस तरह के थॉट्स हम भरेंगे बहुत फायदा होगा. तो बहुत अच्छे प्रयोग इस पर हुए, एक प्रयोग. दूसरा प्रयोग मैं आप सबको बता रहा हूं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स पर हमने कराए हैं, जो बहुत कारगर सिद्ध हुए. डिप्रेशन या जो भी मानसिक रोग हैं, साइकेट्रिक डिजीज हैं, उन पे कराए. तो उन पे हम क्या कराते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, और ईच एंड एवरी थॉट जनरेट्स एनर्जी, तो मैंने लोगों को सिखाया, डिप्रेशन के पेशेंट्स को, कि जब सवेरे उठो, इमीडिएटली आफ्टर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू राइट डाउन 108 टाइम्स दैट आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी विद गुड फीलिंग, यानी मैं हूं, इट्स ट्रू दैट आई एम मास्टर ऑलमाइटी मीन्स आई एम वेरी पावरफुल. सो इससे क्या हुआ, आत्मा से ब्रेन को पावरफुल वाइब्रेशंस जाने लगे, पावरफुल एनर्जी जाने लगी. नाइट को जिनको नींद नहीं आती थी उनको सिखाया, यू हैव टू राइट डाउन आई एम ए ग्रेट सोल, भगवान के हम बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट. इससे ब्रेन पीसफुल होने लगा और लोग सोने लगे, और जब नींद अच्छी हुई और ब्रेन को एनर्जी गई तो डिप्रेशन जाने लगे. बहुत सफलता हुई. मैंने कहा हजारों में पेशेंट ठीक हुए इन चीजों से. दूसरी चीज एक कराई, आप मेडिकल वाले जो थोड़े बहुत रिलीजियस हैं या जिन्होंने थोड़ी स्टडी की, वो भारत में पुनर्जन्म रीइनकार्नेशन रिबर्थ की थ्योरी में तो विश्वास रखते ही हैं, तो पूर्व जन्मों से मनुष्य ने जो पाप कर्म किए उसके इफेक्ट भी मनुष्य को आज बीमार कर रहे हैं या साइकेट्रिक पेशेंट बना रहे हैं. तो हम सिखाते हैं कि क्षमा याचना करो, आस्क पार्डन फ्रॉम दोज सोल्स टू हूम आई हैड गिवन सफरिंग्स, आई हैड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स, आई हैड टॉर्चर देम, जस्ट मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें, एंड यू बी हैप्पी, प्लीज बी हैप्पी, यू बी हैप्पी. तो जो एक निगेटिव एनर्जी आ रही है वो कट ऑफ हो जाएगी, बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं. क्षमा याचना एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हमारे यहां स्लोगन लिखा रहता है, फॉरगेट द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीथिंग टू अदर्स. हम फॉरगिव भी करें और पास्ट को फॉरगेट भी करें, लेकिन हमारा जो लंबा पास्ट है ना थाउजेंड्स ईयर का, उसमें भी बहुत लोगों से बैड एनर्जी हमें आती रहती है, उसको हमें कट ऑफ करना है क्षमा याचना से. तीसरी प्रैक्टिस कराई, पानी चार्ज करके तो पीलना सिखाया ही, अब चौथी प्रैक्टिस हाथों से ब्रेन को एनर्जी देना. ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी रही है. जिनको नींद नहीं आती, माइग्रेन रहते हैं, सिर दर्द रहता है, ब्रेन बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं होता है, ब्रेन में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ होता रहता है सारा दिन, आंखों पर भी इफेक्ट रहता है, बहुत सारी बीमारियों में हमने ब्रेन को एनर्जी देना सिखाया सबको. उन्हें ही सिखाते हैं हम, करो खुद, और उसकी विधि है, देखिए, दोनों हाथ रब करते हुए, वी हैव टू रिमेम्बर आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, थ्री टाइम्स आई एम मास्टर ऑलमाइटी, यू कैन डू नाउ, एंड यू कैन फील एनर्जी इन योर पाम, यू कैन फील पावरफुल वाइब्रेशंस इन योर पाम. अब हेयर आर पावरफुल वाइब्रेशंस इन आवर पाम, पुट देम ऑन योर ब्रेन लाइक दिस और लाइक दिस फॉर ए मिनट, क्लोज योर आईज, फील दैट फ्रॉम माई पाम पावरफुल वाइब्रेशंस आर गोइंग डाउन टू माई ब्रेन फॉर वन मिनट. अगेन रिपीट इट, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, I am master almighty. बहुत अच्छे रिजल्ट हुए. नी पर भी ये एनर्जी दी जा सकती, नी पेन दूर हुए लोगों के. पेनक्रियाज को दी जा सकती है। पेनक्रियाज जो डल हो गई, इनएक्टिव हो गई, वो फुल्ली एक्टिव हो जाती हैं। डायबिटीज कंट्रोल में बहुत मदद मिलती है। लीवर को दी जा सकती है, हार्ट को दी जा सकती है। बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी रही है ये। हमारी एनर्जी ही हमारे हाथों के द्वारा हम भिन्न भिन्न अंग को दे सकते हैं। ब्रेन को देना, आंखों को देना। आपको बहुत खुशी होगी एक बात जानकर, तीन ब्लाइंड लेडी दे गोट आई, दे गोट लाइट इन देर आईज। बिल्कुल ब्लाइंड थी, आंखें खुल गई। एक की 17 डेज में खुल गई केवल, एक की 3 मास में खुल गई, एक की 1.5 मास में खुल गई। और ऐसे लोग जिनकी आंखों में कुछ ऐसी बीमारियां थी जो इनक्योरेबल थी, ठीक हुए। ऐसे भी 10 केस होंगे, ज्यादा तो मैंने नहीं करा इस पर 10 केस ऐसे कि जिनकी नर्व वीक हो गई हैं और डल होती जा रही है आईसाइट और कोई इलाज नहीं है। उनके आंखों को एनर्जी दिलाई, ब्रेन को दिलाई ताकि नर्व पावरफुल हो जाएं, आंखों को एनर्जी दिलाई, ठीक हो गए। तो ये बहुत ही सुंदर चमत्कार नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारी एनर्जी का इफेक्ट रहा बहुत सारी बीमारियों पर। तो हम सबके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। हम अपनी पावर को यूज करें तो मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन की पावर सचमुच बहुत अच्छी तरह काम करती है। किडनी फेलियर वालों को मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई। कुछ लोग तो ऐसे दोनों किडनी बिल्कुल फेल हो रही है। डायलिसिस हफ्ते में 3 बार, किडनी को एनर्जी देना, यही मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, ठीक हो गई। कुछ ऐसे भी पेशेंट पर कराया जिनको किडनी दूसरी लगाई गई थी और इन्फेक्शन हो गया था और दे हैड टू डाई, लेकिन एनर्जी देने से, पानी चार्ज करके पीने से, मेडिटेशन करने से ऐसे लोग ठीक हो गए, जिंदे हो गए। बहुत सुंदर थेरेपी, बहुत सुंदर। मुझे इतना आनंद आता है जब लोग आकर बताते हैं, मुझे फोन से बताते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई जो ठीक नहीं हो रही थी। तो सचमुच बहुत खुशी होती है कि अगर आज का मनुष्य स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करने लगे, अपने मन को बहुत पॉजिटिव बना ले, बहुत खुशी में रहना सीख जाए, तो सभी बीमारियों से मुक्त होना सहज हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं, आप सब तो जानते ही होंगे, WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि 2020 से संसार में डिप्रेशन और मानसिक रोग महामारी होगी। हमें इसे रोकना भी है और रोकने के लिए आप सभी जो डॉक्टर्स हैं, आप अपने पेशेंट को कुछ चीजें सिखा दें। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक लाइफ इजी, इजी गोइंग नेचर, हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम, हाउ टू मिनिमाइज रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस, हाउ टू चेंज योर बिहेवियर। तो एक सुखी जीवन जीना सीखेंगे, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, सेंसिटिव नहीं बनेंगे। सेंसिटिव होने से हर चीज टेंशन दे देती है, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। आजकल सोचने की आदत ज्यादा है, मनुष्य सेंसिटिव बहुत होते जाते हैं, साइकेट्रिक डिजीज बढ़ रही है। इसका कारण संसार में बढ़ता हुआ पाप भी है, बहुत पाप बढ़ रहा है। हम सबको, आप सबको डॉक्टर्स में, क्योंकि भावना होती है लोगों की, आप दूसरों को सिखाएंगे कि अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो ये करो। तो हमारे पास ये बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि हम दूसरों को बोल्ड बना दें, करेजियस कर दें, उनके अंदर हिम्मत पैदा कर दें कि वो ठीक हो जाएंगे। आप डॉक्टर्स भी करते हैं किसी को, ये तो नहीं कहते तुम मर जाओगे, तुम ठीक ही नहीं होंगे, ये कहना भी गलत होता है। कैंसर के पेशेंट भी ठीक होते हैं, फोर्थ स्टेज वाले भी हमने ठीक होते देखे हैं, 10 साल जिए हैं। तो सभी भाई बहनें जो हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा, आप सभी अपने जीवन को भी बहुत हैप्पी लाइफ बनाएं, अपने मन में दूसरों के लिए गुड विशेज रखें, अपने वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर करें। आपके पास पेशेंट आए, होपफुल होकर जाए कि अब हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब के पास आ गए ना, हम ठीक हो जाएंगे, आपके वाइब्रेशंस इसमें बहुत काम करेंगे, क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशंस में बहुत ज्यादा पावर होती है, और राजयोग से हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। आप सभी को मैं कहूंगा कि अपने को राजयोगी अवश्य बनाएं। मैं बिल्कुल सत्य बात आपको कहने जा रहा हूं, दिस इज द टाइम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया बदल रही है, गिरावट तो आ रही है, लेकिन अच्छाई की तरफ भी ये जा रही है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारे सुप्रीम फादर हैं, जो गॉड ऑलमाइटी हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, ओशन ऑफ नॉलेज हैं, वो इस सृष्टि पर आकर अपना डिवाइन टास्क कर रहे हैं। हम सब उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सब उन्हीं की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि गॉड हैज कम डाउन टू बिकम ए टीचर, सुप्रीम टीचर, एंड ही इज इम्पार्टिंग परफेक्ट नॉलेज। आप उसके पास आइए, उससे परफेक्ट नॉलेज लीजिए, आपको मेडिकल साइंस में भी और अच्छे अनुभव होंगे। ब्रेन को एनर्जी देकर आप ब्रेन को शांत कर सकेंगे, जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बहुत ब्रेन, उनको आप शांत कर सकेंगे। हमने कई बच्चों पर प्रयोग कराए, जो बच्चे बिल्कुल हाइपर एक्टिव थे, दूसरे कुछ ऐसे बच्चे जो डल हेडेड थे, उनकी माताओं को सिखाया हाउ टू गिव एनर्जी टू देयर ब्रेन, और जो हाइपर एक्टिव बच्चे थे ओनली इन 21 डेज दे बिकेम नॉर्मल, और जो डल बुद्धि थे इन 21 डेज दे बिकम इंटेलिजेंट, दे बिकेम इंटेलिजेंट। सो बहुत सुंदर ये एक्सपीरियंस है, पर हमारे हाथों में एनर्जी उतनी ही आएगी जितनी हमारे मन में होगी। हमारा मन निगेटिव है, हम डबल माइंडेड हैं, तो हमारे हाथों से वो पावरफुल एनर्जी इतनी अच्छी निकलेगी नहीं, काम नहीं करेगी। तो अपने को बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर, सुख देने वाले बनाना है। आप डॉक्टर्स तो सबको बहुत सुख देते हैं, हमारी नर्सिस बहनें भाई भी लोगों को बहुत सुख देते हैं, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल है, हम देखते हैं कैसे सच्चे दिल से वो सब सेवा में लगे रहते हैं, अपना भी सब कुछ भूलकर। कोरोना काल में भी आप सब ने मानवता की जो सेवा की है वो तो गोल्डन वर्ड्स में लिखने योग्य है। निसंदेह अपनी केयर न करते हुए बलिदान करके आप सभी ने पेशेंट्स को राहत दी है। हमारे भारत की तो कल्चर ही बहुत महान है, जिसमें मनुष्य मनुष्य के लिए अपना सब कुछ डेडिकेट करता आया है। तो मेरी ओर से, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, ब्रह्मा कुमारी की ओर से, मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत थैंक्स दे रहा हूँ। आप स्वयं भी सदा हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें, और आपके बोल में इतनी पावर आए, आपके हाथों में इतनी पावर आए कि आप जिसको बोल दें कि आप ठीक हो जाएंगे वो ठीक हो जाएंगे, जिस पर आप दृष्टि डाल दें आपके सुंदर वाइब्रेशंस दूसरों को हील करने लगेंगे। तो हमारी भी यही शुभ भावना है, आपके परिवार भी सुखी हों, सब सक्सेसफुल हों, आपके बच्चे, आपके परिवारों में प्यार की गंगा बहे, और आप भगवान से जुड़कर उससे भी अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय सूर्य भाई जी का, जिन्होंने राजयोगा इन हीलिंग एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम सबको लाभान्वित किया। मैं आशा करता हूं कि उनके इन वचनों से हम सभी प्रेरित रहे होंगे, हम सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें मिली होंगी जिसे हम अपने लाइफ में फॉलो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी वक्ताओं का जिन्होंने इस इनॉग्रल सेशन में हम सबको अपने वचनों से, अपने अनुभवों से, अपने सुंदर विचारों से लाभान्वित किया है। माइंड बॉडी मेडिसिन के कॉन्फ्रेंस की इस शुरुआती वेला में हमने बहुत कुछ सुना है। अक्सर कहा जाता है कि जब शुरुआत ही इतनी अच्छी है तो आगे का सफर कितना सुंदर हो सकता है। आज एक अच्छे दिन पर हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और इस उद्घाटन सत्र में भी हमने यही शुरुआत की है। सुबह के सत्र में बस इतना ही, शाम के सत्र में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। शाम के सत्र में कुछ ऐसे ही अनूठे विचारों के साथ, कुछ नए स्पीकर्स के साथ, मोटिवेशनल एनर्जी के साथ हम वापस मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।
मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज प्रेजेंट्स अ 3-डे माइंड बॉडी मेडिसिन ई कॉन्फ्रेंस, स्पिरिचुअल डायमेंशंस इन हेल्थ केयर। द टाइम इज नाउ। Awakening.